Praktiknya sederhana. Dan biare uri shiksha se. दसवीं दिन की मध्य में बात चल रही थी जब ब्रह्मा की रात पूरी हो जाती है। कौन सी रात? अज्ञान अंधकार में रहने की रात पूरी हो जाती है। ब्रह्मा अज्ञान अंधकार क्योंकि ब्रह्मा दादा लिख रहा है अपनी आत्मा को कृष्ण की आत्मा समझते हैं। ठीक है, भक्ति मार्ग में जाते भी है हे कृष्ण नारायण वासुदेव, परंतु भक्ति मार्ग में सतयुग के आदि में जो नारायण का खति था और जो बचपन में कृष्ण था उसे कृष्ण की बात को जानते हैं। संगम युग में कोई नर से नारायण बनते हैं डायरेक्ट, कौन बनाता है कैसे बनाता है उस पुरुषोत्तम संगम युग की बात तो भक्ति मार्ग में कोई नहीं जानते। और दादा लेखराज ब्रह्मा है भक्ति मार्ग वालों में पथ। जिनकी बुद्धि में पक्का बैठ जाता है कि मैं ही गीता का साकार भगवान हूँ, जबकि ब्रह्मा मुख से उच्चारी शिव बाप की वाणी में बोला है गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, क्योंकि कृष्ण तो बच्चा है, बच्चा बुद्धि है। गीता में तो राजयोग का ज्ञान है, राजयोग के ज्ञान की बातों को, राज की बातों को बच्चा कैसे समझेगा। और गीता का ज्ञान तो स्वयं गीता पति भगवान का गाया हुआ है। भगवान जो ज्ञान देते हैं गीता में, उस गीता में ही लिखा हुआ है गुह्यात् गुह्यतरम् ज्ञानम्। गुहे से गुहे ज्ञान सुनाता हूँ, वो बच्चे की बुद्धि में कैसे रखेगा। तो ये रहस्य दादा लेखराज ब्रह्मा की बुद्धि में नहीं बैठता। कि मैं ही सतयुग में जन्म लेने वाली आत्मा, मनुष्य सच रूपी वृक्ष का पहला पत्ता कृष्ण हूँ, और मैं ही गीता का भगवान हूँ, ये बुद्धि में पक्का रहता है। परंतु वृक्ष के पत्ते को जन्म देने वाला तो बीज होता है ना, बीज बाप को कहा जाता है। बीज बोने वाला होता ही है बाप। ये बात दादा निश्वराधि ब्रह्मा की बुद्धि में नहीं बैठती। और यही बड़े से बड़ी एक जो भूल है जिसके कारण सारी दुनिया मुगालते में आ जाती है। अगर दुनिया वालों को पता होता कि गीता का भगवान निराकार शिव है, जिसकी बिंदी का ही नाम शिव है और वो निराकार ज्योति बिंदु मनुष्य शक्ति का बीज है, अविनाशी बीज है, मनुष्य सृष्टि में जो भी सृष्टि का चक्र है 5000 साल का, उस चक्र में वो आत्मा ऑलराउंड पार्ट बजाती है। और उस ऑलराउंड पार्टधारी हीरो पार्टधारी में शिव ज्योति बिंदु की आत्मा प्रवेश करती है। जिस रहस्य को भक्ति मार्ग वाले नहीं जानते, वो समझते हैं शिव की आत्मा और देव देव महादेव जिसे कहा जाता है उसकी आत्मा एक ही आत्मा है, इसलिए वो शिव और शंकर को एक ही मान लेते हैं। जबकि देवों का देव महादेव देवता है, वो भगवान तो नहीं है। मनुष्य को देवता तो भगवान बनाता है ना, देवता स्वयं तो देवता नहीं बनता। भले देवों में बड़ा देव हो महादेव हो, तो इस गलती के कारण भक्ति मार्ग के 2000 वर्ष के द्वैतवादी युगों में, द्वापर और कलयुग में जो भी धर्म पिताएं आए और जो भी उनके फॉलोअर्स हुए, उन्होंने कृष्ण साकार को भगवान नहीं माना, क्योंकि वे द्वैतवादी धर्म पिताएं सार निराकारवादी। निराकार को ही भगवान के रूप में मानने वाले, और उन सबको जन्म देने वाली आत्मा सृष्टि के आदि में पालना करने वाली आत्मा ब्राह्मणों की नौकुरियों के रूप में पालना करने वाली आत्मा दादा लेखराज कृष्ण की आत्मा है, जिसकी गोद में सभी धर्म की आत्माएं या तो ब्राह्मणों के रूप में जन्म लेकर के अब कुरियों के ब्राह्मण बनते हैं, नीची कुरियों के ब्राह्मण बनते हैं, क्योंकि दादा लेखराज ब्रह्मा की गोद को ही सर्वोपरि समझते हैं। उनके मुख से शिव बाप ने जो सुनाया उस मुख की सुनाई हुई वाणी पर उनका तवज्जो नहीं जाता। बुद्धि अभिमानी धर्म पिता है, ब्रह्मा की गोद को ही सब कुछ समझ लेते हैं, ब्रह्मा को ही भगवान मान लेते हैं। जबकि शिव बाप ब्रह्मा के तन में बताते हैं कि मैं जिस तन में भी प्रवेश करता हूँ उसका नाम ब्रह्मा रखता हूँ, परंतु ब्रह्मा नामधारी तो अनेक हैं। कोई एप्पल नंबर में भी ब्रह्मा नामधारी हुआ होगा, जो अव्वल नंबर में ब्रह्मा नामधारी हुआ है उसका शास्त्र में भी गायन है परम ब्रह्म, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः, उसी गुरु को नमस्कार कर। बुद्धि झुकाता हूँ और किसी ब्रह्मा को बुद्धि नहीं झुकाता हूँ। तो साबित हो जाता है कि शिव बाप दादा लेखराज ब्रह्मा नामधारी में नहीं आते हैं, उनको साक्षात्कार के ऊपर आते हैं और साक्षात्कार करने से ये साबित नहीं होता कि जिसने साक्षात्कार किया उसमें भगवान बाप आता है। साक्षात्कार तो तुलसीदास को भी हुए, सूरदास को भी हुए, मीरा को भी हुए, रैदास को भी हुए, परंतु उनमें किसी में भगवान तो नहीं आ गया। तो साबित होता है कि प्रवेश करना अलग बात है और साक्षात्कार होना अलग बात है। साक्षात्कार उन आत्माओं को होती है जो भावना प्रधान होती है, बुद्धि प्रधान नहीं। भावना होने की बड़ी प्रबल होती है, उस भावना का पोषण करने के लिए भक्ति मार्ग में भी जो भक्त भगवान को गणेश रूप में मानते हैं, देवी के रूप में मानते हैं, हनुमान के रूप में भगवान मानते हैं, तो उनको हनुमान का देवी का या गणेश का साक्षात्कार होता रहता है, क्योंकि भगवान तो सार की भावना का भावना देते हैं। परंतु ये कोई प्रैक्टिकल बात नहीं है साक्षात्कार, क्योंकि साक्षात्कार से किसी को स्वर्ग नहीं मिलता। भगवान जो दूसरे धर्म वाले भी जिसे मानते हैं हेविन का रचयिता है, अंग्रेज लोग भी कहते हैं, मुसलमान भी कहते हैं जन्नत का रचयिता है, हेविनली गॉडफादर कहते हैं, मुसलमान कहते हैं अल्लाह अव्वल दीन, अव्वल नंबर दीन अर्थात धर्म की स्थापना करने वाला है। तो सभी विधर्मी धर्म पिता ये मानते हैं और उनके फॉलोअर्स से भी मानते हैं कि हमारे धर्म से पहले, हमारे धर्म पिता से पहले कोई और धर्म भी था और वो सबसे पुराना धर्म। क्योंकि जो भी धर्म पिता जाए उन्होंने अपने कुल की वृद्धि तभी की जब भारतवासी मनुष्य आत्माएं उनके धर्म में कन्वर्ट होने लगी। ये हिस्ट्री बताती है कि भारतवासी ही जन्म जन्मांतर कन्वर्ट हुए हैं दूसरे धर्मों में। दूसरे धर्म के कोई लोग जो अपने धर्म के पक्के होते हैं वो कभी कन्वर्ट नहीं होते, कभी दूसरे का धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ते न सुनते हैं। तो भारत ही मात्र देश है, दूसरा दुनिया का कोई भी देश मात्र देश नहीं कहा जाता। माताओं में ये आदत होती है कि सुनी सुनी बातों पर विश्वास कर लेती है, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करके कन्वर्ट हो जाती। जैसे इस सच पर साकार रूप में प्रैक्टिकल जीवन में देखा जाए तो दादा देवराज ब्रह्मा बड़े से बड़ी माता साबित होती है, जिसकी गोद में सभी धर्मों में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं भगवान जब आते हैं संगम युग में तब पालना लेगी। दूसरे धर्म से आई हुई कन्वर्ट होकर के आई हुई मनुष्य आत्माएं भले ब्राह्मण बन जाती है इस जन्म में, परंतु फिर भी अंतिम रिजल्ट में ये साबित होता है कि वो द्वैतवादी द्वापर युग से जिन धर्मों में कन्वर्ट हुई थी उन्हीं धर्म के काम का पोषण करने लग पड़ती है। क्यों? क्योंकि बाप को नहीं पहचान पाते, इस सारी मनुष्य शक्ति का 500-700 करोड़ की मनुष्य शक्ति का बाप कौन है? पहचान ही नहीं पाते, क्योंकि उन कन्वर्ट होने वाली आत्माओं ने कच्चे ब्राह्मणों की पुरियों में आने वाली आत्माओं ने भगवान बाप जिस पुरुषोत्तम संगम युग पर आते हैं पुरुषोत्तम पार्ट को पहचाना ही नहीं, जिसे गीता में परमात्मा इति उदाहरण से कहा गया, इस सारे संसार में मनुष्य रूप में पार्ट बजाने वाली आत्माएं, चाहे वो देव आत्माएं हो, चाहे वो मनुष्य आत्मा हो, चाहे वो राक्षसी आत्माएं हो, चाहे उनमें भगवान ही पार्ट क्यों न बजाता हो, जो सभी आत्माएं तीन वर्गों में बांटी गई हैं गीता में, एक है क्षर, क्षरित होने वाली आत्माएं, दो आत्माएं पूरे सृष्टि चक्र में ऑल राउंड पार्ट नहीं बजाती, बीच में ही शरीर से छीण हो जाती है, क्षरित हो जाती है। आत्मा शक्तिहीन होने के कारण आधा तो पार्ट बजाए ही नहीं पाती, वो सब है क्षरित आत्मा। पतन के गर्त में जाने वाली आत्माएं, परंतु उनके बीच में भी मनक्षरित होने वाली मनुष्य आत्माओं के बीच में भी, मनुष्य के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्माओं में भी एक आत्मा ऐसी है जो इस सच रूपी रंगमंच पर ऑलराउंड पार्ट बजाती है, जिसके लिए भारतीय शास्त्रों में कहा है उसका कोई माँ बाप नहीं, उसको जन्म लेते, उसकी मृत्यु होते, दुनिया में कोई ने नहीं देखा, उसको नाम दिया है समाधि देव, पुरुष है पुराण है, तुमस्य जगतस्य परम निधानम्। सारी जगत का तुम आधार हो, मनुष्य सत्य का भी तुम आधार हो, बाकी प्राणी तो सब मनुष्य से नीचे हैं, हमको तो आधार लेना ही पड़े। इस बात को क्लियर करने के लिए गीता में आया है अव्यक्त मूर्ति नाम, अव्यक्त मूर्ति से ये सारा जड़ जंगम संसार जन्म लेता है, वहीं से जन्म लेता है और महामृत्यु के समय प्रलय काल में सभी प्राणी मात्र या जड़ जंगम पदार्थ सब उसी में समा जाते हैं। तो एक ही बीज है इस मनुष्य शक्ति का, जिस बीज में से सारा संसार निकलता है,
वो
जगत का पिता है, विश्व पिता है। विश्व को ही एक धर्म को नहीं कहा जाता, सब धर्म कलयुग के अंत में जब सृष्टि पर मौजूद होते हैं तब उसे विश्व धर्म कहा जाता है, विश्व का पिता कहा जाता है। तो क्षरित होने वाली आत्माओं में, पतित बनने वाली आत्माओं में एक आत्मा ऐसी है जो क्षरित होते हुए भी पुरुषोत्तम संगम युग में आत्माओं के बाप से, जो निराकारी आत्माओं का निराकारी बाप है, उससे निराकारी ज्ञान का अकूत भंडार प्राप्त कर लेती है। इसलिए वो अकूत भंडार प्राप्त करने वाली आत्मा गीता में उसे नाम परमात्मा इति उदाहरण कहा गया है। इसलिए जब भी कहते हैं भगवान का नाम लेते हैं, कहते हैं परम पिता परमात्मा, परम पिता पहले परमात्मा बाद, ऐसे कभी नहीं कहते परमात्मा परम पिता। जैसे कहते हैं शिव शंकर, ऐसे कभी नहीं कहते शंकर शिव। क्यों नहीं कहते है? इसलिए नहीं कहते कि अक्षर तो एक ही आत्मा है, आत्माओं के बीच में माना निराकार ज्योतिबिंदु आत्माओं के बीच में पार्ट बजाने वाली आत्मा एक ही है जिसे कहते हैं परम पिता, जिसका कोई भी पिता नहीं। धर्म पिताएं भी मानते हैं आदम को, अंग्रेज लोग मानते हैं एडम को, हिंदू मानते हैं आदिदेव को, जैनी मानते हैं आदिनाथ को। तो जिस आदि पुरुष को, आदि मानव को सभी धर्म वाले मानते तो हैं, लेकिन जानते नहीं। फिर उसकी जानकारी कौन देगा? कोई देगा या नहीं देगा? कभी देगा या नहीं देगा? कभी न कभी तो देगा। तो जानकारी देने वाली आत्मा वही आत्मा है जो कभी भी जन्म मरण के चक्र में नहीं आती, और सभी आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती है, जन्म लेती हैं, शरीर का जन्म लेती हैं, तो उनके शरीर का नाम पड़ता है, उनकी आत्मा का नाम नहीं होता। शरीर के द्वारा जो काम करती हैं, उस काम के आधार पर उनका नाम पड़ता है। शास्त्रों में, भारतीय शास्त्र में खास ये बात देखी जाती है कि काम के आधार पर नाम पड़ता है, लेकिन एक ही आत्मा ऐसी है कि जो शरीर ही उसका नहीं है, कि देह है ही नहीं, पांच तत्वों से बनी हुई देह के बंधन में वो कभी आता ही नहीं। इसकी बिंदु रूप निराकार आत्मा का नाम शिव है। जो शिव नाम कभी बदलता नहीं, इस सृष्टि में भी गर्भ से जन्म लेकर तो नहीं आता, लेकिन गीता में जैसे शब्द आया है प्रवेश तुम, मैं प्रवेश करने योग्य हूँ। जैसे और धर्म पिताएं भी आते हैं, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि, जैसे क्राइस्ट ने जीसस में प्रवेश किया, ऐसे ही वो आत्माओं का बाप जिसका कोई बाप नहीं है, वो भी किसी मनुष्य तन में प्रवेश करता है। और ऐसा पार्ट बजाता है कि पतित से पतित सृष्टि में आता है, कलयुग के अंत में पतित से पतित तामसी मनुष्य तन में आता है, परंतु फिर भी उसको पतित पने का संग का रंग नहीं लगता। और दुनिया की जो भी आत्माएं हैं मनुष्य शक्ति का बाप ही क्यों न हो, जिसे एडम आदम वगैरह कहा जाता है, उसको भी संग का रंग लगता है। जो सारी मनुष्य शक्ति का बीज है, हीरो पाठधारी है, और उसके बाद जो भी धर्म पिताए हैं, नंबर वन चंद्रवंश को जन्म देने वाला ज्ञान चंद्रमा ब्रह्म, इस्लाम वंश को जन्म देने वाला इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट या उनके परवर्ती जो भी सहयोगी धर्म पिताए हुए हों, उस सभी ऐसी कमजोर आत्माएं बन जाती हैं इस सच्ची रूपी रंगमंच पर आकर कि उन्हें संग का रंग जरूर लग जाता है। एक शिव आत्मा ही ऐसी है जो इस सृष्टि पर आता है, पार्ट भी बजाता है, प्यार का सागर कहा जाता है। इंद्रियों से ही प्यार किया जाता है, बिना शरीर के तो प्यार होता नहीं कोई, फिर भी कोई के अटैचमेंट में नहीं आता। सारी दुनिया भले उसके अटैचमेंट में आए, ऐसे अटैचमेंट में आ जाए कि जैसे प्यार में कहते हैं मैं तुझ में समा जाऊं, तू मुझ में समा जाए, एक दूसरे में लीन हो जाए, एक हो जाए, लेकिन वो किसी में मिलकर के एक नहीं होता, वो सदा सर्वदा तुरिया ही रहता है। किसी आत्मा के साथ सदा काल के लिए मिक्स होकर एक हो ही नहीं सकता, इसलिए उसको सदा शिव कहते हैं। क्या सदा शंकर नहीं कहते? भले भक्ति मार्ग में शिव शंकर को एक समझ लेते हैं, परंतु सदा शंकर कोई कहता है, है? नहीं कहता, वो सदा शिव है। हाँ ये जरूर है कि वो सदा शिव आत्माओं का बाप ज्योति बिंदु जब इस शक्ति पर आता है तो अपना विरुद्ध सुनाता है कि मैं तुम आत्मा रूपी बच्चों को नंबर बार आप समान बनाकर जाऊंगा। क्या जैसे मैं निराकारी निर्विकारी निरहंकारी हूं, इसी तरह तुम आत्माओं को भी आज इस संगम युग में, जिस युग में मैं आता हूं, कैसा बनाकर जाऊंगा? आप समान बनाकर जाऊंगा, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी। तो 500-700 करोड़ मनुष्य आप में एक जैसी भक्ति होंगी, वह सब अलग अलग प्रकार से है? एक जैसी निराकारी बनेगी या कुछ न कुछ परसेंटेज में बेअहंकार रहेगा है? रहेगा जरूर, लेकिन एक आत्मा ऐसी है जो अभी अभी बताया था कि चरित होती हुई आत्माओं मनुष्य आत्माओं के बीच जो मनुष्य आत्माओं का बाप है वो संगम युग में निराकार आत्माओं का बाप जो निराकारी ज्ञान का अकूत भंडार देता है उसको संपूर्ण धारण करके संगम युग में 100% बाप समान बन जाती है, एक ही आत्मा। उसमें लेश मात्र भी देहंकार नहीं रहता, और उसी की यादगार भारतवर्ष में ढेर के ढेर और सारी दुनिया में यादगारें खुदाई में पाई गई। वो यादगार सार्वभौम यादगार है। कौन सी यादगार? शिवलिंग। परंतु कोई से भी पूछो दुनिया में, भारत में पूछो, भारत के बड़े बड़े विद्वान आचार्य से पूछो, ये कौन है शिवलिंग? क्या है? इसने क्या किया? क्यों पूछते हो? तो कोई निश्चित जवाब नहीं देता, सिर्फ इतना कहेंगे शिव शंकर भोलेनाथ है। अरे शिव के साथ शंकर का नाम क्यों लगा दिया? शिव माना ही कल्याणकारी, और शंकर माने क्या काम करता है? विनाशकारी। कहां सारी शक्ति का विनाश करने वाला, और कहां सारी शक्ति की मनुष्य आत्माओं का कल्याण करने वाला। नाम अलग अलग नहीं है तो नाम अलग अलग है ना है? अलग अलग नाम है तो अलग अलग अर्थ भी तो है। शिव निश्चयती वाला नाम है, शंकरण वाला नाम है, यह परम पवित्र नाम है, उसमें अंश मात्र भी कुछ भी मिक्स नहीं है। और शंकर में, शंकर के चित्र को देख लो, मस्तक में जो नेत्र दिखाते हैं उसको कहते हैं शिव नेत्र। क्या कहते हैं? शिव नेत्र। बाकी आजू बाजू के दोनों नेत्र पड़े हुए हैं और शिव नेत्र सदा है खड़ा हुआ है। मना वो ही सृष्टि पर जब आता है शिव, तो एक सेकंड भी बैठता नहीं है, रात दिन पार्ट बजाता है। उसकी आत्मा को शरीर देह है, है? देह ही नहीं तो थकेगा है? थक ही नहीं सकता। जिनको देह होती है वो थकेंगे। आप कहेंगे देवताओं को भी तो देह होती है, लेकिन देवताओं में देवान होता ही नहीं है, वो तो आत्मा की स्थिति में रहते हैं। देखो शिव अलग, शंकर अलग, और मंदिरों में प्राचीन में देखो जाके पुराने से पुराने कांपिल्य नगर में देखो, रामेश्वरनाथ मंदिर में शिवलिंग बीच में है और आजू बाजू में सभी देवताओं की मूर्तियां रखी हुई। तो साबित होता है कि आसपास जो बैठे हुए हैं वो मुखिया नहीं है, बीच में जो बैठा हुआ है वो मुखिया है। उसी की याद में सब बैठे हुए, आराधना में बैठे हुए। शंकर का भी चित्र उन्हीं देवताओं के बीच में रखा जाता है। जिसे देव देव महादेव कहा जाता है, ऐसे कहीं नहीं किसी मंदिर में देखा होगा कि बीच में शंकर की मूर्ति हो और बाजू में शिवलिंग रखा हो, कोई भी मंदिर में देखने में नहीं आएगा। इसे साबित होता है वैसे भी दिमाग क्लियर है कि शंकर याद में बैठा हुआ विशेष दिखाया जाता है। शंकर किसी की याद में बैठा होगा ना, अपने से ऊंचे को याद करेगा ना, वो भी याद कर रहा है।
हाँ,
याद करने वालों के बीच में याद का पुरुषार्थ कहो, योग का पुरुषार्थ कहो, माना योगियों के बीच में वो सर्वोपरि योगी है, इसलिए देव देव महादेव का टाइटल मिलता है। देवताओं में बड़ा देवता और योगियों में बड़ा योगी योगीश्वर कहा जाता है, योगियों का ईश्वर। और बैठक में ऐसी गहरी याद दिखाई गई है, ऐसी निराकारी स्टेज भी दिखाई गई है, जैसे क्राइस्ट के, बुद्ध के, गुरु नानक की मूर्तियों में देखी जाती है, चित्रों में देखी जाती है। उनके चेहरे से निराकार आत्मा झलकती है कि देव अंग लगता है, निराकार आत्मा झलकती। उन धर्म पिताओं का भी वो बाप है, धर्म पिताएं भी मनुष्य हैं, उन मनुष्यों का भी वो बाप है, इसलिए वो याद के सब्जेक्ट में भी सबसे तीखी जाने वाली आत्मा है। और ये भी गायन है कि धर्म पिताओं में से कोई भी धर्म पिता या उसका फॉलोअर इस दुनिया में नहीं हुआ जो सारे विश्व पर विजय प्राप्त कर सके, क्योंकि सभी धर्म पिताएं देह अभिमानी थे, देह अभिमान के आधार पर हिंसक युद्ध उनके फॉलोअर्स ने किए। हिंसा अच्छी चीज है या बुरी बुरी बात है? हिंसा के आधार पर कोई विश्व की बात सही ले ही नहीं सकता। तो भगवान का सिखाया हुआ गीता ज्ञान का राजयोग ही है, जिस राजयोग से सारे विश्व का बादशाह बनता है, विश्वनाथ कहलाता है। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, एक ही आत्मा है जो सारे विश्व पर विजय प्राप्त करती है, जिसकी यादगार झंडे में आज भी भारत की गवर्नमेंट झंडा बुलंद करती है, झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा क्या। अब उनसे कोई पूछे कपड़े के झंडा विजय विश्व करेगा? अरे विश्व के ऊपर विजय चैतन्य आत्माओं ने की होगी या जड़ कपड़ा करेगा? अरे शास्त्रों में लिखा दिए शरीर क्या है? वस्त्र है। कपड़ा है तो जो झंडे में तीन कपड़े दिखाए गए हैं, तीन रंग के, वो तीन प्रकार के स्वभाव संस्कार दिखाए गए। एक है सबसे नीचे ब्रह्मापुरी रूपी सूक्ष्मपुरी में रहने वाला ब्रह्मा देवता, जो हरे कपड़े का दिखाया गया, सब जानते हैं कि विषय का रंग तीन प्रकार का होता है, काला, नीला और हरा। तो हरे रंग का कपड़ा दिखाया गया, जो विषैला पार्ट बजाने वाली आत्मा का पार्ट है। खासकर संगम युग में लंबे समय तक ये पार्ट बजाती है। और वही आत्मा है जो शंकर के गले में वासुकी नाल के रूप में लिपटी हुई दिखाई गई है। सर्प सबसे जास्ति कामी होता है, वो आत्मा स्थूल शरीर त्यागने के बाद सूक्ष्म शरीर से उसे ज्ञान चंद्रमा की आत्मा कहो, वो शंकर के मस्तक पर अधूरे रूप में जब तक दिखाई जाती है तब तक वो बड़े से बड़ा सर्प है, विषैला सर्प। इसलिए आपने देखा होगा मुसलमानों के झंडे में क्या दिखाया जाता है, अधूरा चंद्रमा दिखाया। किसकी यादगार है? उसकी चंद्रमा की यादगार है जिससे चंद्रवंश निकलता है। सतयुग में होता है नर से नारायण बनने वाले का सूर्य वंश क्या, और त्रेता में होता है चंद्रवंश। किसका वंश? चंद्रमा का वंश। और उस चंद्रवंश से जन्म लेता है कौन सा वंश? द्वापर में इस्लाम वंश, जो बाद में मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हो गए, जिनका झंडे का विशेष चिन्ह में अधूरा चंद्रमा दिखाया जाता है। उनका बड़े से बड़ा त्योहार कौन सा होता है? ईद। ईद के दिन उस चंद्रमा को देखने के लिए बड़े लालायित रहते हैं। कैसा चंद्रमा है? अधूरा चंद्रमा। वही अधूरा चंद्रमा जो विश्व पिता शंकर है मनुष्यों के बीच में उनके मस्तक पर भी दिखाया जाता है और गले में सर्प के रूप में भी दिखाया जाता है। कोई कहे मस्तक में क्यों दिखाया जाता है? मस्तक में इसलिए दिखाते हैं कि सूर्यवंश के बाद दुनिया में दूसरा धर्म कौन सा होता है? चंद्रवंश। तो ज्ञान सूर्य शिव से माना शंकर से जिस मनुष्य सृष्टि में पहले पत्ते का जन्म होता है वो आत्मा घटती कला वाली होती है। कौन सी आत्मा? ब्रह्मा का अवतार सती हूँ, कृष्ण की आत्मा।
दृष्टि के लिए आपका कला वाली कैसी है? हाँ, लक्ष्मी नारायण के चित्र में देखो, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी वाइब्रेशन ले रही है नारायण की, और नारायण वाइब्रेशन ले रहा है पवित्रता का लक्ष्मी से, लेकिन देह का अंग नहीं दिखाई दे रहा है। जिसके द्वारा वो एक दूसरे से अर्धांगिनी या अर्धांग बनने का प्रमाण मिले, लेकिन राधा कृष्ण नीचे उनके बच्चे दिखाए गए हैं राधा कृष्ण सत्युग में, वो एक दूसरे से दृष्टि का लेन देन कर रहे हैं, और जो दृष्टि है वो देह का अंग है या नहीं, देह विनाशी या अविनाशी, देह विनाशी, देह के दो प्रकार के अंग ज्ञानेन्द्रियां और कर्मेंद्रिया, ज्ञानेन्द्रियों में भी सर्वश्रेष्ठ अंग है आंखें, वो भी विनाशी या अविनाशी, वो भी विनाशी। तो राधा कृष्ण विनाशी आंखों का एक दूसरे से सुख लेकर के अपने परिवार की वृद्धि करते हैं, शक्ति बढ़ाते हैं। तो उनकी शक्ति क्षीण होती है या नहीं होती है? है? शक्ति क्षीण होती है, इसलिए सृष्टि के आदि से ही मनुष्य सृष्टि में क्षीणता का आरंभ करने वाली वो आत्माएं साबित हो जाती है। कौन? राधा कृष्ण, जिन्हें घटती कला वाला चंद्रमा कहा जाता। कब तक घटती कला, तब तक उनकी घटती कला होती रहती है संगम युग शूटिंग पीरियड में, जब तक वो मनुष्य सृष्टि के बाप को अपने बाप के रूप में पहचान नहीं लेती, अपने स्वरूप को पहचानती है कि मैं ज्ञान चंद्रमा वाली आत्मा हूँ, घटती कलाओं में जाने वाली, मैं सृष्टि का पहला पत्ता हूँ। उसके बाद दुनिया में जो भी मनुष्य आत्माएं जन्म लेंगी वो घटती कला वाली ही होंगी या तरती कला वाली होंगी? सब घटती कला वाली। तो सारी दुनिया सतयुग के आदि से, जब से राधा कृष्ण का जन्म होता है, तब से लेकर के वो तरती कला वाला ही बनती है, कोई भी तरती कला वाला नहीं बनता। बाकी चार युगों का आवर्तन होने के बाद तभी तमो प्रधान दुनिया आने पर, उस तमो प्रधान दुनिया को सत्व प्रधान बनाने के लिए जब आत्माओं का बाप शिव आते हैं, तो उस समय जो आत्मा उस ज्ञान सूर्य शिव को पहचानती है 100%, उसको लकब मिलता है ज्ञान सूर्य, जो गीता में लिखा है भगवान कहते हैं मैं जब आता हूँ तो पहले किसको ज्ञान देता हूँ? है सूर्य को ज्ञान देता हूँ। तो वो आत्मा सूर्यवंशियों में श्रेष्ठ मानी जाती है, जिसे भारतवर्ष में राम भी कहते हैं। लेकिन शिव बाप कहते हैं ब्रह्मा मुख से बोली हुई ब्रह्म वाक्य में ही कहते हैं, ब्रह्म वाक्यों को वेदवान कहा जाता है। ब्रह्मा के मुख से वेद निकले, पत्थर की लकीरें हैं वेद वाक्य। तो बोला कि मनुष्य सृष्टि में जो हीरो पार्टधारी है वो हीरा है, हीरे अनेक प्रकार के होते हैं छोटे बड़े, परंतु वो बेस कीमती होते हैं, होते तो पत्थर ही हैं, जैसे नौरतन भी पत्थर होते हैं वैसे हीरा भी पत्थर ही होता है। माने शिव पत्थर बुद्धि कहेंगे शिव को, है शिव पत्थर बुद्धि नहीं है, लेकिन जिसमें प्रवेश करता है वो बड़े से बड़ा दुनिया का पत्थर बुद्धि बनता है, जब तमो प्रधान बनता है वही आत्मा शिव बाप के आने पर, शिव बाप का निराकारी बाप का निराकारी अकूट ज्ञान का भंडार धारण करती है, तो सबसे जास्ती सत्य प्रधान हीरा भी बनती है। और धर्मों में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं या डायरेक्ट जन्म लेने वाली आत्माएं, कम कीमत वाले रतन बनेंगे, माणिक बनेंगे, मोती बनेंगे, मूंगा बनेंगे, कोई भी रतन कम कीमत वाले बनेंगे, लेकिन हीरा कोई भी नहीं बन सकते, क्योंकि असली हीरे की ये खासियत है एकदम निविड़ अंधकार में रख दिया जाए तो भी चमक मारता है। ये अज्ञान अंधकार की बात है। सारी दुनिया में जब घोर महान अज्ञान अंधकार फैल जाता है, जिसकी यादगार महाशिवरात्रि मानी जाती है, कितने बजे मनाते हैं महाशिवरात्रि? रात के 12 बजे, घोर अंधकार का टाइम। उस अज्ञान अंधकार में जहाँ 500-700 करोड़ दूसरे धर्म के मनुष्य मात्र तो अंधेरे में रहते ही हैं, लेकिन सूर्यवंशी चंद्रवंशी आत्माएं जो सृष्टि के आदि में होती हैं, वो भी तामसी बन जाती हैं और अज्ञान अंधकार में बिल्कुल डूब जाती, ऐसी डूब जाती है कि उन्हें अपने बाप का पता लगता ही नहीं, बाप को भी भूल जाती, अनिश्चय बुद्धि बन जाती है, अनिश्चय बुद्धि रूपी मृत्यु के काल में समा जाती है, क्योंकि बाप को पहचानती है, उनमें एक ही आत्मा है जो कभी भी काल के गाल में समाती ही, अनिश्चय रूपी अंधकार में आती ही नहीं। जब से भगवान बाप का परिचय मिलता है उससे पहले तो आती है, अपने आत्मा के स्वरूप को भी भूल जाती, यहां तक भूल जाती कि 100% पत्थर बुद्धि ग्रेनाइट का पत्थर बन जाती। मतलब कि चार युगों में जो चार सीन है, सत्य प्रधान, सत्य सामान्य, रजो और तमो, उन चारों युगों में चार स्टेज इससे पार होती है, संघ के रंग में आते आते, और भक्ति मार्ग में उसकी यादगार चली आती है। स्वर्ण लिंग, रजत लिंग चांदी का लिंग, ताम्र लिंग तांबे का लिंग, और कलयुग में जब तमो प्रधान बन जाती है तो काली हो जाती है, लौह लिंग, अब काले पत्थर का लिंग। ये चार अवस्थाएं लिंग की दिखाई गई है भक्ति मार्ग। अब वो तो मनुष्य सृष्टि का बात है, जो भी मनुष्य आत्माएं तामसी बनती हैं, उन तामसी बनने वाली आत्माओं के बीच में वो सबसे जास्ती तामसी या नंबर वार तामसी, सबसे जास्ती का सबसे जाति तामसी धर्म कौन सा है? धर्म नहीं है, धर्म है इस्लाम धर्म, वो तो द्वापर में आता है रजो प्रधान युग में। आदमी तामसी कहते है, नास्तिक रशियन, जो न आत्मा को मानते, न परमात्मा को मानते, न स्वर्ग को मानते, न नरक को मानते, अपने ही देह अहंकार में डूबे रहते। इतना भयंकर देह अहंकार है कि वो देह के अहंकार में ऐसे चूर हो जाते हैं कि दुनिया को नीचा दिखाने के लिए और अपने को सर्वशक्तिवान साबित करने के लिए ऐसा बारूद तैयार करते हैं एटमिक एनर्जी नाम का, कि उस बारूद में सारी दुनिया भस्म हो जाए, उन्हें पता ही नहीं रहता कि हम जो चीज बनाए रहे हैं उसका विस्फोट होने पर सारी दुनिया तो भस्म होगी, लेकिन हम भी भस्म। जैसे क्रोधी आदमी होता है, क्रोध के वशीभूत होकर इतना देहकारी बन जाता है कि अपने घर के बर्तन ही फोड़ने लगता है, ऐसी हालत हो जाती। तो न रशियंस जिन्हें मनुष्य कहा जाता है, चलो राक्षस ही सही, उनका भी कोई बाप होगा या नहीं होगा? इसीलिए ब्रह्मा के मुख से बोले हुए महावाक्य में शिव बाप बोलते हैं, बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ है। क्या बोलते हैं? तुम्हारा बाप आया हुआ है। मन बच्चे क्यों बोलते है? या 500-700 करोड़ मनुष्य शक्ति की आत्माओं को बच्चे बोला? नहीं, बच्चे बोलते हैं तो बाप अपने बच्चों से बात करते हैं या पराये धर्म पिताओं के बच्चों से बात करते हैं? बच्चे है अपने बच्चों से बात करते हैं। कौन से अपने बच्चे और कौन से पराये धर्म पिताओं के बच्चे? कोई निशानी है? है जो चलो हम गिनती नहीं पूछ रहे, निशानी पूछ रहे उनकी। जो बच्चे हैं शिव बाप के, असली बच्चे धर्म पिताओं के बच्चे नहीं बनते। वो बच्चे जिनसे बाप प्रैक्टिकल में सम्मुख होकर बात करते हैं और धर्म पिताओं के बच्चों से बात नहीं करते, उनकी निशानी क्या होगी?
सारी बात तो मानने वाले
हैं, उनकी निशानी मुरली ने ही बताई ब्रह्मा मुख से कि जो अपने धर्म के पक्के होंगे वो बाप की सारी बातों को मानेंगे। ऐसे नहीं हो सकता कि एक बात को माने और दूसरी बात को ना माने। और जो विधर्मियों के बच्चे होंगे, विधर्मी धर्म पिताओं के बच्चे होंगे, उनकी भी पहचान बताइए क्या?
आधी बात मानेंगे आधी नहीं,
आधी चलो नबी
कोई बात,
कोई पॉइंट मानेंगे और कोई पॉइंट नहीं मानेंगे, कोई बात मानेंगे कोई बात नहीं मानेंगे। ये निशानी है, विधर्मी धर्म पिताओं के जो बच्चे हैं उन्हें की ये निशानी। दूसरी निशानी वो सदा सर्वदा निराकारी बाप है, है? आत्माओं का आत्मा है निराकारी तो आत्माओं का बाप भी निराकारी। आत्माएं सदा सर्वदा निराकारी स्टेज में नहीं रहती है, अपने को देह समझने लगती, देहबान में आ जाती, फिर आत्मा तो है ना, है आत्माएं। 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं आत्माएं हैं, लेकिन जो दूसरे धर्म पिताओं के प्रभाव में आ जाती हैं, दूसरे धर्म पिताओं को अपना बाप मान बैठती हैं, दूसरे धर्म पिताओं या उनके फॉलोअर से ज्ञान सुनने लग पड़ती है और ओरिजिनल को भूल जाती है। ये ब्रह्म वाक्य में ही बोला है, एक से ज्ञान सुनना चाहिए, अनेकों से ज्ञान सुना तो विचारी ज्ञान हो जाएगा। और विचारी ज्ञान जिनका हो जाएगा वो विचारी धर्मों में जन्म लेंगे या नहीं लेंगे? है विचारी धर्म है ये, कौन कौन से? हाँ जी, मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष में तीन प्रकार के वृक्ष के ट्यूब से दिखाए गए। एक ट्यूब ऐसा है जिसे थुर कहते हैं, नीचे से लेकर के ऊपर तक सीधा जाता है, उस धर्म में पक्की रहने वाली आत्माएं दाई ओर के भारतीय धर्मों में दाई ओर की डालियों में जाती ही नहीं और बाई ओर की वाम मार्गी पार्ट बजाने वाली डालियों में विचारी डालियों में जाती ही नहीं, सीधी नीचे से लेकर के ऊपर तक अपने धर्म की पक्की है जन्म जन्मांतर। जहां भी जन्म लेंगी, जिस देश में भी जन्म लेंगी, उस जीवन में जीवन रहते दूसरे धर्म में कन्वर्ट नहीं, ऐसी पक्की आत्माएं अपने धर्म, जिनके धर्म का नाम दिया है सत्य सनातन धर्म। क्या? देवी देवता सत्य सनातन धर्म। कैसे देवी देवता? जो कभी 16 कला संपूर्ण बनने वाली आत्माएं थी वो देवात्माएं, सरती कला वाली आत्माएं थी। खास करके संगम युग में जब भगवान बाप इस सृष्टि पर आते हैं तो शूटिंग काल में जैसी होंगी, ड्रामा में भी चढ़ती कला वाली होंगी या नीचे जाने वाली डालियों में होंगी, है चढ़ती कला वाली रहती है, वो तना सीधा ऊपर जाता है। जो सूर्यवंशी आत्माओं के मुकाबले दूसरी है, भारतीय धर्मों में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं, जैसे बौद्ध धर्म, बुद्ध धर्म का ट्यूब, संन्यास धर्म, संन्यास धर्म की डाली दिखाई गई, सिख धर्म, आर्य समाज धर्म नहीं है मठ पंत है, चलो ये सभी भारतीय धर्म में जाने वाली आत्माएं महत्व देती हैं पवित्रता को, ब्रह्मचर्य को। इनके मुकाबले जो बाई ओर के धर्मों में जाने वाली डालियां हैं वो सब पवित्रता को छीन करने वाले धर्म, विचार को बढ़ाने वाले धर्म हैं। चाहे इस्लाम धर्म हो, चाहे क्रिश्चियन धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, या धर्म के नाम पर अधर्म, नास्तिकवादी हूं, तो तीन तरह के ट्यूब्स हैं अब जरा सोचें। जो सीधा ऊपर जाता है उसका बीज कौन है? सारी मनुष्य शक्ति रूपी वृक्ष का बीज एक ही, लेकिन माता एक होती है। यह भारतीय परंपराओं में ये बात प्रसिद्ध है कि भारतवासी कहते हैं एक स्त्री मरी एक जूती गई, दूसरी जूती लेते हैं, दूसरी गई तीसरी लेते हैं, तीसरी गई चौथी लेते हैं। तो माताएं अलग अलग अनेक हो सकती हैं, लेकिन मूल बीज रूप पिता एक परिवार का एक ही होता है। और जो बड़ी माता से पैदा होता है बच्चा, वो बाप की प्रॉपर्टी का हकदार बनता है समूह। कि दूसरी माताओं से जो बाद में आती हैं, उनके बच्चे बाप की समूची प्रॉपर्टी के हकदार बनते हैं। जो पहली माता होती है उसके बच्चों का हक ज्यादा होता है, यही बात है। आत्माओं का बाप शिव जब इस धरती पर आते हैं तो कहते हैं, मैं जिस तन में भी प्रवेश करूंगा उसका नाम ब्रह्म रखूंगा। इसका मतलब एक तन में प्रवेश नहीं करता सदाकाल है, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा तन भी लेता है, जिसकी यादगार पंचमुखी ब्रह्मा का चित्र या मूर्तियां बनाई जाती है। पंचमुखी ब्रह्मा में से पांच मुखों में से एक मुख काट दिया जाता है, माना ब्रह्मा को दाढ़ी मूछ वाला दिखाते हैं, भले पंचमुखी भी दिखाते हैं चौमुखी भी दिखाते हैं, लेकिन दाढ़ी मूछ वाला भिखारी या निर्विकारी है, भिखारी। और उसके एक मुख को काट के अलग कर दिया, इसका मतलब आत्मा को अलग कर दिया और देवान को अलग कर दिया। तो वो एक आत्मा संपन्न ब्रह्मा के रूप में, बाकी चार ब्रह्मा के रूप में जो चार आत्माएं हैं वो नंबर वार ब्रह्मा तो नंबर वार विष्णु बनती है। जो विष्णु की चार भुजाओं में से कोई दाहिनी ओर की भुजा, कोई बाईं ओर की भुजा, दाहिनी ओर की भुजा श्रेष्ठ या बाईं ओर की भुजाएं श्रेष्ठ, दाएं हाथ से दान धर्म वगैरह अच्छे कार्य किए जाते हैं श्रेष्ठ मानी जाती है, बाएं हाथ से गंदगी की सफाई काम किया जाता है, इसलिए वो उतनी शिष्य नहीं है। इसी तरह दो भुजाएं ऊपर की और दो भुजाएं नीचे की, ऊपर वाला श्रेष्ठ या नीचे वाला श्रेष्ठ, ऊपर वाला श्रेष्ठ। तो बोला ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा, विष्णु के चार भुजाओं में से जो ऊपर की दो भुजाएं हैं उनमें एक है ज्ञान का शंखनाद करने वाला है, क्या करने वाला, ज्ञान का शंखनाद करने वाला, और एक भुजा है ऊपर की, उसे चक्र दिखाते हैं ज्ञान का चक्र घुमाने वाला, स्वदर्शन चक्रधारी माने मनन चिंतन मंथन करने वाला, मतलब कि विष्णु की चारों भुजाएं नंबर बार हैं, जो चार मुख के रूप में ब्रह्मा की दिखाई जाती है। ब्रह्मा है अपूर्ण और विष्णु है संपूर्ण, लेकिन भुजाएं जो हैं वो अपने आप चलती हैं या उनको चलाने वाला कोई और होता है? है? चलाने वाला कोई और होता है, वो भुजाओं में सर्वोपरि होता है, भुजाओं को चलाने वाली आत्मा। तो जो ब्रह्मा के पांच सिरों में से एक सिर काट दिया गया, आत्मा अलग हो गई, वो आत्मा की स्थिति में स्थित होने वाली आत्मा संगम युग में जब से प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेती है तब से लेकर अंत तक अपनी आत्मा के पार्ट में स्थिर रहती है, अपनी आत्मा के पार्ट को पहचान लेती है। कब से प्रत्यक्ष होती है? कब से प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेती है? उसका प्रत्यक्षता रूपी वर्ष भी ब्राह्मणों की दुनिया में मनाया जाता है। कौन सा प्रत्यक्षता वर्ष ब्राह्मणों की दुनिया में मनाया गया था? 76, जिसकी घोषणा 76 से 10 साल पहले 66 में ही मुरलियों में कर दी गई। क्या पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना 10 वर्षों में हो जाएगी? जो साक्षात्कार से बनाए गए चार चित्रों में से लक्ष्मी नारायण के चित्र में वो घोषणा 10 वर्ष की छपी हुई है, अभी भी ज्ञानामृत पत्रिका में भी छापी गई, मुरलियों में भी वो बात निकली और सरकार को भी मेमोरेंडम दिया गया। 10 साल की बारे में तो देखो, ब्रह्मा के मुख से बोली हुई वाणी झूठी हो सकती है, हो सकती है, नहीं हो सकती। 76 में बल प्रत्यक्षता वर्ष मना लिया, सारे ब्रह्मा परिवार ने मना लिया, जिस ब्राह्मण परिवार के ब्राह्मणों में एडवांस में जाने वाले ब्राह्मण भी थे और बेसिक नॉलेज में अब तक रहने वाले ब्राह्मण भी हैं, लेकिन कोई नहीं जाना वो कौन से बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया गया। मतलब मुरली में बताया गया बेहद के दो बाप हैं, एक आत्माओं का बाप और एक मनुष्य सृष्टि का बाप। तो कोई की बुद्धि नहीं चली कि 76 में जो बोला लक्ष्मी नारायण का जन्म होगा प्रत्यक्षता रूपी जन्म, और नई दुनिया स्थापन होगी, पुरानी दुनिया खलास हो जाएगी। तो खलास हो जाएगी ये बात तो लेकिन उसका अर्थ न समझने के कारण जैसा वो समझते थे विनाश की बात को, वैसा विनाश तो हुआ नहीं। टूट गए ब्राह्मणों के संगठन के, ढेर के ढेर टूट गए 76 के बाद। लेकिन ब्रह्मवाक्य में बोला गया है तो बात सच्ची होनी चाहिए ना। तो सच्ची ऐसे होती है कि जैसे सन 47 में ब्राह्मणों का पुराना संगठन ओम मंडली खलास हो गई थी और ब्राह्मणों की नई दुनिया नया संगठन ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के नाम से शुरू हो गया था। ऐसे यहां भी एडवांस पार्टी और उसका प्रणेता जिसे शास्त्रों में भी माना गया है और गीता में भी नाम आया है, याद है कौन सा नाम आया है? हाँ जी, गीता में कहा है सांख्य योग पृथक बाला प्रवर्तन्ति न पंडित। सांख्य और योग अलग अलग नहीं है, जो योग की उपलब्धि है वही सांख्य की उपलब्धि है। पहले क्या चाहिए है? ज्ञान चाहिए। ज्ञान माने जानकारी, सच्चाई की जानकारी या झूठ की जानकारी? सच्चाई की जानकारी। सत्य सदाकाल होता है या आज है कल नहीं होगा? जैसे गीता ने कहा ना सते विद्यते भाव। असत्य जो लोग आज भी मानते हैं झूठ के पाव नहीं होते, और सत्य सदैव टिका रहता है। तो उस मनुष्य शक्ति में कोई मनुष्य ऐसा है? देवता रूप में, मनुष्य रूप में, राक्षस रूप में कोई मनुष्य आत्मा ऐसी है जो सदा काल हो? है या नहीं? जो है तो सत्य है या झूठ है? सत्य है। और सत्य को ही ज्ञान कहा जाता है, सत्य को ही भगवान कहा जाता है। गॉड इज ट्रुथ, ट्रुथ इज गॉड। जो भगवान सत्य है वही सत्य युग की स्थापना कर सकता है। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सत्य नहीं है, सदा काल नहीं है, तो सत्य है या असत्य? असत्य। वो सत्युग की स्थापना प्रैक्टिकल में नहीं कर सकता। तो थ्योरी के आधार पर देखा जाए तो ज्ञान के जानकार के रूप में एक ही आत्मा सत्य है, अखंड सत्य है, वो है जन्म मरण के चक्र से न्यारी आत्मा शिव, त्रिकालदर्शी। तीनों काल में सत्य है, तीनों काल भूत भविष्य वर्तमान ये इस सृष्टि पर होते हैं या इस सृष्टि लोक से परे कोई लोक है जहाँ तीनों कालों का ज्ञान होता है? है? इस सृष्टि पर तीनों काल होते हैं, इसलिए बताया। ब्रह्मा मुख से ही हम बच्चों को बता दिया कि मैं हूं त्रिकालदर्शी। कौन? शिव, मैं मास्टर त्रिकालदर्शी नहीं हूँ, मैं प्रैक्टिकल में त्रिकालदर्शी नहीं हूँ। मास्टर त्रिकालदर्शी तुम बच्चे बनते हो, माना तुम बच्चों में से कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो ऑलरेडी हो ही हो, सदा काल हो, लेकिन बनते हो। नंबर वन, तो जो मास्टर त्रिकालदर्शी बाप समान बच्चा बनता है वो है जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माओं के बीच एक ही मनुष्य आत्मा। दो आत्माओं के बीच, आत्मा आत्मा भाई भाई के बीच बड़ा भाई है, है या नहीं? वो ही है बाप का बड़ा बच्चा, जो बाप की अखूट प्रॉपर्टी को ग्रहण कर लेता है और बाप उसे खुशी खुशी अपनी अखूट प्रॉपर्टी का वर्षा देता भी है। कोई कहे उसे ही क्यों देता है, कैसे पता चल गया उसको देता है, उसी को देना है, तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। जो त्रिकालदर्शी आत्मा है वो शशि रूपी रंगमंच पर पहचान नहीं सकती। इस शशि रूपी रंगमंच पर कौन सी आत्मा है जिसने हर युग में सत्य ही पार्ट बजाया है, ज्ञान युक्त पार्ट बजाया है, अज्ञानता का पार्ट नहीं बजाया? चाहे मन के वाइब्रेशन से बजाया हो, दृष्टि से बजाया हो, वाचा से बजाया हो, या कर्म इंद्रियों से बजाया हो, लेकिन सीमत के अनुकूल ही पार्ट बजाया। तो मनुष्य शक्ति में 5000 वर्ष लगातार श्रीमति के अनुकूल पार्ट बजाने वाली आत्मा, उसमें ये संस्कार कहां से आए होंगे? संगमी से आए होंगे। संगमी भी शूटिंग पीरियड में ही उस आत्मा ने ये ज्ञान के 100% तक संस्कार भरे होंगे। लगातार चढ़ती कला के संस्कार भरे होंगे, उतरती कला के संस्कार नहीं भरे। इसीलिए प्रैक्टिकल में 5000 वर्ष के शक्ति में चक्र में ये देखा जाता है कि द्वैतवादी युगों में जब द्वैतवादी धर्म पिताएं उनके धर्म नेताएं इस शक्ति पर पार्ट बजाया तो चाहे जितने भी खूंखार बनकर आए हों द्वैतवादी धर्म वाले, भारत में जब आए आक्रमण किए तो नाक रगड़ करके गए या विजयी बन के गए? सत्यमेव जयते, सत्य की सदा जीत होती है। सत्य को कोई हरा ही नहीं सकता। वो आक्रामक हिटलर, नेपोलियन, मुसोलिनी, कोई भी हो, अलेक्जेंडर वगैरह, विश्व विजय की आकांक्षा लेकर आए थे और और भारत में आकर के नाक नीची करके चले गए। उनकी सारी आकांक्षाएं धूमिल हो गई। तो कोई तो पाठधारी रहे होंगे सत्यनिधि रंगमंच पर भारत में, जिन्होंने सारे भारत का प्रतिनिधित्व किया हो, सारे भारतवासियों को संगठित करके ऐसा संगठन एक बनाया हो जो भले छोटा संगठन क्यों न रहा हो परंतु आक्रांताओं, विदेशी आक्रांताओं की लाखों लाख सेना का मुट्ठी भर सैनिकों ने मुकाबला कर लिया और उनको भगा दिया। ऐसे पाठधारी हिस्ट्री में देखने में नहीं आते, लेकिन कोई ने पक्का पक्का पहचाना नहीं कि वो हीरो पाठधारी के रूप में पाठ बजाने वाली मनुष्य आत्माएं जन्म बाई जन्म में कौन थी। अभी जब आत्माओं का बाप संगम में आते हैं तो बताते हैं। वो डायरेक्टर के रूप में आते हैं रंगमंच पर, डायरेक्टर पद के पीछे पार्ट बजाता है या रंगमंच पर सामने होके पार्ट बजाता है। पर्दे के पीछे रहकर पार्ट बजाता है, देखने में नहीं आता लेकिन डायरेक्शन उसी के चलते हैं रंगमंच पर। तो ऐसा पार्टधारी है निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, जो खुदा कहा गया है मुसलमानों ने खा क्या क्या कहा गया क्यों खुद आता है। अच्छा, आत्माएं आत्माएं बिंदु बिंदु का बाप ज्योति बिंदु शिव है, खुद आता है बिंदु, तो खुदा के रूप में मुसलमानों ने पहचान लिया बिंदु को, है पहचाना, सब पहचानते है मैंने लास्ट में खुद आता है, आदमी नहीं आता खुद
पहचानते हो
मैंने आदमी आया लेकिन खुदा बन के नहीं आया, तो प्रैक्टिकल में खुदा करूं
प्रैक्टिकल में वो समय नहीं पहचान
पाते। चलो वो नहीं पहचान पाते, वो जिनमें प्रवेश करते हैं जिन भारतवासियों को कन्वर्ट करते हैं वो भारतवासी आत्माएं तो संगम युग में जब भगवान बाप आते हैं शिव ज्योति बिंदु निराकार आत्माओं का बाप, तो वो कन्वर्ट होकर के भारत में ब्राह्मण के रूप में जन्म लेने वाली आत्माएं पहचानती हैं या नहीं पहचानती है? ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने निराकार ज्योति बिंदु आत्माओं के बाप निराकार शिव को पहचाना या नहीं पहचाना? नहीं पहचाना। मैं आत्मा ज्योति बिंदु, हम आत्माओं ज्योति बिंदु का बाप ज्योति बिंदु, त्रिमूर्ति के शिव के चित्र में वो ज्योति बिंदु शिव दिखाया नहीं जाता है, दिखाया जाता तो पहचान है ना, आत्मा तो बाप नहीं है। अरे बिंदु बिंदु आत्माएं सब एक जैसी रूप में, वो सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु उन बिंदु बिंदु के बीच में आएगा तो रूप तो सबका एक है, पहचानने में कैसे आएगी है? जब कोई मुकर्रर शरीर में पार्ट बजाए और वो मुकर्रर शरीरधारी की पहचान मिले, जो पहचान शिव बाप ब्रह्मा मुख से बोली हुई वेद वाणी कहो, श्रीमद् भगवत गीता कहो, उसमें वो पहचान दी गई है। उस ज्ञान की वाणी को कम से कम जो मानेंगे वो ही जानेंगे, या जो मानेंगे भी नहीं, या कोई बात मानेंगे कोई बात नहीं मानेंगे तो वो पहचानेंगे है। जो हर बात को मानेंगे वो पूरा पहचानेंगे। तो जो पूरा पूरा पहचानते हैं उनको कहा जाता है रुद्रवत्। जिनके नाम पर रुद्र ज्ञान यज्ञ की स्थापना होती है, कौन सा यज्ञ? अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र नाम क्यों रखा गया? वो रुद्र वत्सों ने ऐसा रौद्र रूप धारण किया रुद्र के साथ कि सारे संसार का विनाश हो गया। कोई आत्मा इस सत्य रूपी रंगमंच पर नहीं बची, जो बची शरीर के साथ वो रुद्र कहे गए, रुद्राक्ष के मणके कहे गए, बीज कहे गए, और जो नहीं बचे जिनके शरीर भी पांच तत्वों में लीन हो गए वो रुद्रवक्ष नहीं कहे जा सकते। रुद्र यज्ञ रचने वाले रुद्र के बच्चे नहीं कहे जा सकते। अब ये पहले ही बता दिया, मेरी बिंदी का ही नाम शिव है, वो कभी बदलता नहीं, रुद्र नाम पड़ेगा तो कब पड़ेगा? शरीर में प्रवेश करेंगे तब रुद्र नाम पड़ेगा, या बिना प्रवेश किए हुए मेरी आत्मा का नाम रुद्र पड़ेगा? तो जिसमें प्रवेश करता हूं पहली पहले वही रुद्र है, रौद्र रूप धारण करता है, ऐसा रौद्र रूप धारण करता है कि जितने भी विपरीत धर्म वाले हैं विधर्मी दुष्टताम विनाशाय च दुष्टताम, दुष्ट कर्म करने वाले सब का विनाश कराए। कोई कहे जैसे जिसने आता है उसका नाम ब्रह्मा रखता है, रुद्र नाम कैसे पड़ गया है?
हाँ,
जिसमें प्रवेश करता है शिव कहते हैं, उसका नाम मैं ब्रह्मा रखता हूँ पहले पहले, और जिसमें अव्वल नंबर में प्रवेश करूंगा वो हुआ परम ब्रह्म, हुआ ना। तो जो मनुष्य आत्मा तो है, जैसे दादा लेखराज ब्रह्मा भी मनुष्य आत्मा है या नहीं? पुरुष का चूल्हा है या स्त्री चूल्हा है? ऐसे ही परम ब्रह्म भी पुरुष चूल्हा है, स्त्री चूल्हा नहीं। लेकिन नाम रख दिया काम के आधार पर, क्या परम ब्रह्म, सिर्फ ब्रह्मा नहीं, क्या नाम रखा? परम ब्रह्म, यानी माता के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्माओं में परम पार्टधारी, परे से परे पार्टधारी। और परम पुरुष को पुरुष माने आत्मा, शरीर रूपी गुरु और उसमें रहने वाली आत्मा, क्या माने शयन करने वाली। तो शरीर रूपी पुरी में शयन करने वाली, आराम से शयन करने वाली आत्माओं के बीच में परम पुरुष कौन सी आत्मा है? है शिव, शंकर आराम से कहां शयन करती है, उसे तो पुरुषार्थ करना पड़ता है। पुरुषार्थ ही है या आराम ही है? है तो पुरुषार्थ ही, पुरुषार्थ करना पड़ रहा है, पढ़ाई पढ़नी पड़ रही है, तब तक आराम करें नहीं। तो शिव है परम पुरुष, परे से परे रहने वाली आत्मा, आत्मा माने पुरुष। उसके मुकाबले इस दुनिया में भी कोई आत्मा नहीं है जो परम पुरुष के रूप में पार्ट बजाने वाली है। तो परम पुरुष की पत्नी भी कोई होनी चाहिए या नहीं है? तो शास्त्रकार लोग यही मानते हैं कि दो का खेल है, पुरुष और प्रकृति। क्या ये संसार दो का खेल है, पुरुष और प्रकृति? प्रकृति स्त्री रूपिणी, माता रूपिणी, और पुरुष पुरुष रूप में। दो का मेल होता है तो सृष्टि बनती है, मेल नहीं होगा तो परिवार नहीं बन सकता, सृष्टि नहीं बन सकती। तो परम पुरुष चाहिए इस सृष्टि के आदिकाल में, और उसके साथ कौन चाहिए है? परा प्रकृति चाहिए। क्या प्रकृति? जल वायु अग्नि आकाश, ये तो जड़ तत्व हैं, लेकिन परा प्रकृति का बीज भी चाहिए। उस बीज में पांच तत्वों का संघात हो और पांच तत्वों का जो बीज हो संघात हो वो विनाशी हो या अविनाशी हो, है अविनाशी हो। तो वो अविनाशी परा प्रकृति का रूप जो है जिसको शास्त्रों में माना गया और हम भी मंदिरों में जाकर जन जन मंत्र बोलते रहे, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। संस्कृत में त्वम एक को कहा जाता है, दो चार को नहीं। त्वम माने तू एक। तो बताओ जो यादगार मंदिर बने हुए हैं उनमें कौन सा मंदिर है जिसमें एक के सामने कहते हैं जाकर तू ही मेरी माता है, तू ही मेरा पिता है, है? लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे वो तो झूठ बात हो गई। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, वो तो दो है। राधा कृष्ण के मंदिर में, राम सीता के मंदिर में, वो तो झूठी बात हो गई। वो एक कौन है जो मेरी माता भी है जो मेरा पिता भी है? कौन है? है?
इसके मंदिर
शिव है। एक ही है या दो है? एक ही है। उसमें माता रूप भी है, उसमें पिता रूप भी है। परम पुरुष और परा प्रकृति, एक पुरुष और एक स्त्री। स्त्री जड़त्व ही बुद्धि वाली या पुरुष जड़त्व में ही बुद्धि वाला है? स्त्री जड़त्व में ही बुद्धि वाली। इसीलिए षष्ठी के अंत में तामसी दुनिया होने पर जो माताएं हैं सारी दुनिया की माताएं अधीन हो जाती हैं, अबला हो जाती हैं या सबला बन जाती हैं? अधीन हो जाती हैं। बुद्धिहीन अधीन होगा या बुद्धिमान अधीन होगा? माता जड़त्वमयी बुद्धि वाली और पिता विशाल बुद्धि वाला, क्योंकि माता घर संभालती है और पिता बाहर की दुनिया में सब कुछ देखता है, भागता है, घर में भी देखता है बाहर भी देखता है। तो जो विशाल बुद्धि है वो मन बुद्धि रूपी आत्मा है, प्योर। तो विशाल बुद्धि नहीं है तो दूसरों से प्रभावित होने वाला प्रजा बनेगा, रचना बनेगा या रचयिता बनेगा? रचना बनेगा। पुरुष की पहली रचना कौन होती है? स्त्री होती है पहली रचना। ये तो दुनिया की बात है। सृष्टि के एकदम आदिकाल में परम पुरुष शिव जो बुद्धिमानों की बुद्धि है वो है पुरुष, परम पुरुष। और जिसमें वो पहले प्रवेश करके ब्रह्मा नाम देता है उसके मुकाबले वो चैतन्य बुद्धि वाली हुई या जड़त्वमयी बुद्धि वाली हुई है? जड़त्वमयी बुद्धि वाली। भले मनुष्यों के बीच में मनुष्यों का पिता ही क्यों न है तो भी कैसी आत्मा है? जड़त्वमयी बुद्धि वाली। इसलिए वो आत्मा भी सृष्टि के अंत में, सृष्टि के चौथे सीन में, तामसी युग में आधीन अनुभव करती है या स्वाधीन रहती है? आधीन अनुभव करती है। तो टल आधीन, यहाँ तक कि सतयुग के आदि में जो कृष्ण वाली आत्मा है, दादा लेखराज वाली आत्मा, वो उसकी रचना थी? रचना थी या नहीं? अंतिम जन्म में उसका, उसको दास बनना पड़ता है। किसको है? हाँ जी, मनुष्य सृष्टि के बाप को आधीन बनना पड़ता है, भागीदार के रूप में। भले मैनेजर है, बड़ा दास दासी, तो भी नौकर है या नहीं है? नौकर। ये अंतर पड़ जाता है। जैसे दुनिया की सब माताओं की हालत, वैसे ही माताओं में जो बड़े से बड़ी माता, परे से परे माता है, परे से परे पार्ट बजाने वाली ब्रह्म रूपी, परम ब्रह्म रूपी माता है, उसकी भी क्या हालत हो जाती है? आदिल हो जाती। क्यों? कारण क्या हुआ? ऐसी जड़त्वमयी बुद्धि है परम पुरुष के मुकाबले। क्या कारण बनता है कि जो अंतिम जन्म में तामसी होकर के ऐसी आधीन बन जाती है, जो सृष्टि के आदि में उसकी रचना थी, उस रचना बनने वाला पहला पत्ता कृष्ण की आधीन बन करके दास दासी का काम करती है? क्यों बन गई है? पतित माताएं ज्यादा बनती हैं कि पुरुष ज्यादा पतित बनते हैं? है? पुरुष ज्यादा पतित बनते हैं, तो वो तो माता है। सृष्टि की बड़े से बड़ी माता है, परम ब्रह्म है। अरे जवाब नहीं आता, वो ही तो सबसे ज्यादा पतित बनती है। अरे वो माता इस सच्चे रूपी रंग मंच पर सबसे जाति पतित मनुष्य आत्माओं के बीच बनती है या नहीं बनती है? बनती है। सच के आज में जो सबसे जाति पावन थी मनुष्य शक्ति, कैसे बन गई? हाँ, बता दी हरि भाई। क्या करना? नष्टो मोहा स्मृति लगता, अपनी देह से नष्टो मोहा, देह के पदार्थों से नष्टो मोहा, रोटी हो, कपड़ा हो, मकान हो, देह के संबंधी और संपर्कियों से नष्ट मोह, स्वादा से मोह नष्ट हो जाए और स्मृति लब्धा। किसकी स्मृति? एक बाप की जो ऊंचते ऊंच है, जिससे ऊंच कोई आत्मा है ही नहीं, उसकी स्मृति लब्धा। क्या रहे स्मृति में? मैं आत्मा ज्योति दी, और उसकी भी लिमिट बता दी मुरली ने, उसी स्मृति लब्धा, उस स्मृति की लिमिट कुछ बताई। अरे है नहीं, उस निरंतर स्मृति याद कहो, निरंतर याद की लिमिट बताई, निरंतर याद, एक सेकंड भी उस याद के बगैर न जाए। एक ज्योति बिंदु या मैं आत्मा एक ज्योति बिंदु, मेरा बाप एक ज्योति बिंदु, उस ज्योति बिंदु के अलावा 8 घंटे तक और कुछ भी स्मृति न आए। अगर इतनी लिमिट में पहुंच गए तो बाप कहते हैं अब बल नंबर आ जाएंगे। क्या? पहला नंबर मनुष्य शक्ति, सारी दुनिया को मानना पड़ेगा, 500-700 करोड़ को मानना पड़ेगा कि यही मेरा असली बाप है। मनुष्य मेरा नहीं, सारी मनुष्य शक्ति का यही एक बाप है, जिससे प्रैक्टिकल में सारी मनुष्य शक्ति को मुक्ति और जीवन मुक्ति प्राप्त होगी। प्रैक्टिकल में क्या? प्रैक्टिकल में मैंने शरीर के साथ, शरीर के साथ हो आत्मा और अनुभव करे कि मुक्ति मिल गई, देह से मुक्ति मिली, देह के संबंधियों की विस्मृति हो गई, पक्का निश्चय बैठ जाए कि एक के अलावा इस दुनिया में मेरा कोई हितैषी नहीं। वैसे भी देखा जाए इस दुनिया में कौन से 3 संबंध हैं जो सदैव हित ही चाहते हैं? बाप, टीचर और सदगुरु। सदा कल्याण ही कल्याण चाहते, अकल्याण की बात ही नहीं। तो प्रैक्टिकल में एक आत्मा है जो 8 घंटे की लगातार स्मृति की स्टेज पर पहुंचती है, तो शिव बाप कहते हैं ये बच्चा मेरे पूरे वर्ष का हकदार। पूरा वर्ष क्या है? 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 मुक्ति जीवन मुक्ति तो सबको मिलेगी, है? ज्ञान, हाँ, अखूट ज्ञान का भंडार जो शिव बाप के पास है। बाप के पास वर्षा के रूप में अखूट ज्ञान का भंडार है या नहीं है? है। वो अखूट ज्ञान का भंडार अभी किसी बच्चे को अभी तक दिया या नहीं दिया? है? दिया या नहीं दिया है? अरे उमंग उत्साह से नहीं बोलते, दिया लो दे दिया। कोई एक आत्मा माता जी को पता चल गई कि एक आत्मा है जिसको अपने 84 जन्मों का पूरा वृत्तांत मालूम पड़ गया, और वो आत्मा साबित होती है मनुष्य शक्ति का बाप। तो बाप को अपने बच्चों के बारे में सब कुछ मालूम होता है, जीवन चरित्र के बारे में भी नहीं। तो 500 करोड़ के बारे में वो सारा जीवन चरित्र उसके अंदर मौजूद है। अखूब ज्ञान का भंडार है कि नहीं है? है, आपको पता चल गया है। कोई ऐसी आत्मा है जो जड़ और जंगम, क्या जड़ 5 तत्वों की दुनिया, जिसका विश्लेषण आज के 500-700 करोड़ मनुष्य कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं, भौतिक तत्वों का विश्लेषण कर रहे हैं कि आत्मा का विश्लेषण कर रहे हैं? भौतिक तत्वों का, दैहिक तत्वों का, जड़ तत्वों का आलोड़न कर रहे हैं, लेकिन जो विनाशी तत्व हैं उनका आलोड़न कर रहे हैं। अविनाशी आत्मा का उनको ज्ञान भी नहीं है, उसके आलोड़न करने की बात ही नहीं, मंथन करने की बात ही नहीं। तो उसी कहते हैं आध्यात्मवाद, उसके विपरीत भौतिकवाद। पंचभूतों का बुद्धि में मनन चिंतन मंथन चलता रहे तो भौतिकवादी। डॉक्टर लोग हैं क्या करते हैं? शरीर के 5 तत्वों का जानकारी करते हैं या नहीं है? करते हैं। नंबर वन भौतिकवादी है या आध्यात्मवादी? भौतिकवादी। वकील जज, दुनिया में जितने जितने राज्य हैं और राज्यों का जो तंत्र है और उनका संविधान है उसके बारे में जानकारी रखते रखते हैं कि नहीं? वो भी देह में बंधी हुई जो आत्माएं हैं उनका द्वारा बनाया हुआ तंत्र है, देहधारियों के द्वारा बनाया हुआ तंत्र है संविधान, अलग अलग धर्मों का, अलग अलग राज्यों का, कि भगवान का बनाया हुआ है? देहधारियों का बनाया हुआ। इंजीनियर, किसी भी प्रकार के इंजीनियर हो, वो 5 तत्वों का आलोड़न करने वाले, अध्ययन करने वाले। वास्तव में कहें तो स्वाध्याय करने वाले कोई नहीं, स्व माने आत्मा, अध्याय माने अध्ययन करने वाले। कोई भी आध्यात्मवादी नहीं, देह के आधार पर मनन चिंतन मंथन चलता है, देह के 5 तत्वों के आधार पर मनन चिंतन मंथन चलता है तो भौतिकवादी, और आत्मा के बारे में मनन चिंतन मंथन चलता है तो अधि आत्मवादी। अधि माने अंदर, आत्मा ने आत्मा के अंदर क्या है वो अध्यात्मवादी। इस देह के अंदर क्या क्या बीमारियां हैं, इस देह के अंदर क्या क्या बीमारियां हैं, इनको कैसे कैसे किन दवाइयों से ठीक किया जाए, इसको उसको उसको अलग अलग प्रकार की कौन कौन सी दवाइयों से ठीक किया जाए, ये भौतिकवाद हुआ या आध्यात्मवाद हुआ? ये भौतिकवाद है, विनाश की ओर बुद्धि जा रही है या अविनाशी की बुद्धि, अविनाश की तरफ बुद्धि जा रही है? विनाश की तरफ बुद्धि जा रही है। अविनाशी की तरफ बुद्धि तब कहेंगे जब अपनी आत्मा का ज्ञान हो और दूसरी आत्माओं के तरफ भी उनके कल्याण का ज्ञान होने लगे। मनुष्य शक्ति का पाप है तो सारी मनुष्य शक्ति की जो भी आत्माएं हैं, मनुष्य आत्माएं, वो उसके बच्चे हुए या नहीं हुए हैं? उन बच्चों के बारे में, उन मनुष्य आत्माओं के बारे में उसे जानकारी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? वो सारी जानकारी का अखूट भंडार वो एक बड़ा बच्चा आत्मा आत्मा भाई भाइयों के बीच में एक बड़ा भाई बाप का वर्षे का हकदार बन जाता है। वही परंपरा भारतवर्ष में चलती रही, राजाओं में चलती रही। राजाओं ने अपने बड़े बच्चे को कि मझले बच्चों को कि छोटे बच्चों को राजा ही का वर्षा दिया, बड़े बच्चे को दिया। परंपरा किसने शुरू की है? शिव बाप ने परंपरा शुरू की। शिव बाप ज्ञान का अकूट भंडार देता है, छोरी देता है या प्रैक्टिकल भी करके दिखाता है, है? थ्योरेटिकल ज्ञान देता है कि मास्टर त्रिकालदर्शी बनाता है, बनाता है मास्टर त्रिकालदर्शी। सिर्फ थ्योरी का ज्ञान नहीं देता, थ्योरी का ज्ञान स्वयं है उसके पास, इसीलिए त्रिकालदर्शी। और बच्चों को प्रैक्टिकल में करा के जाता है, इसीलिए इसलिए बच्चे हैं मास्टर त्रिकालदर्शी। थ्योरी में पास और प्रैक्टिकल में फेल तो क्या कहेंगे? फेल कहा जाएगा। और प्रैक्टिकल में पास और थ्योरी में फेल हो जाए तो भी वकीलों की दृष्टि में, डॉक्टरों की दृष्टि में, इंजीनियर की दृष्टि में उसका मान होगा या अपमान होगा? मान सम्मान होगा। दुनिया में ऐसे बहुत से हैं सिर्फ नाम मात्र वकालत प्राप्त की है, लेकिन किसी बड़े वकील के नीचे धंधा करते हैं तो चार आने जिंदगी भर कमा पाते। डॉक्टरी की डिग्री ले लेते हैं, मार देंगे दो चार को, डॉक्टर बिल्कुल सही
है।
वैज्ञानिक का मतलब है विशेष ज्ञानी, और विशेष ज्ञानी भी दो प्रकार के, एक देह के पांच तत्वों के विशेष ज्ञानी भौतिकवादी और एक आध्यात्मवादी वैज्ञानिक। आत्मा के अंदर की विशेष जानकारी, अपनी आत्मा के अंदर की भी 84 जन्मों के रिकॉर्ड की जानकारी, और अपनी आत्मा से कनेक्टेड जो भी सृष्टि की आत्माएं हैं, है या नहीं? जन्म जन्मांतर अनेकों आत्माएं कनेक्शन में आती है या नहीं आती है? तो कितना बड़ा संसार हो जाता है हर आत्मा का, नहीं है? हर एक आत्मा जो यहाँ बीज रूप आत्मा रुद्र वत्स कही जाती है, सारे मनुष्य सृष्टि के बीज हैं। उन बीजों के अंदर उनका अपना अपना सारा धार समाया हुआ है या नहीं? पूरी मनुष्य सृष्टि का धार का बीज एक, उसके अंदर 500 करोड़ पत्तों का ज्ञान समाया हुआ होना चाहिए या नहीं? ऐसे ही जो इस्लाम धर्म के जो डाली है उसका जो बीज है उसके अंदर जो इस्लाम धर्म का पूर्वज कहा जाता है, पूर्व माने सबसे पहले, ज माने जन्म लेने वाला। संगम युग में जब भगवान आता है, सृष्टि का फाउंडेशन पड़ता है नई सृष्टि का, तो पहले पहले उस आत्मा ने अमुक धर्म का बीज बनने का, बाप बनने का प्रैक्टिकल में ऐसा पुरुषार्थ किया, तो सब का बीज है। तो उस बीज में अपने धर्म से कनेक्टेड जितने भी तत्व होंगे उनका सारा ज्ञान होगा या नहीं होगा? ऐसे ही जो मनुष्य शक्ति का बाप प्रजापिता है उसमें 500 करोड़ शक्ति का जो भी मनुष्य मात्र है एक एक का ज्ञान समा जाए, उसको कहते हैं अकूट ज्ञान का भंडार। वो सदाकाल किसके पास है? एक शिव बाप आत्माओं के बाप के पास है, और वो देता किसको है? बच्चा कैसे बन जाता? के पास जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को सबसे जास्ती संभालने वाला, जैसे दुनिया में बाप होते हैं उनके कारखाने होते हैं, जमीन ज्यादा जमींदार बाप होते हैं, दुकानदार बाप होते हैं, उनकी दुकान को, उनके कारखाने को, उनके जमीन को, जो भी उनका वर्षा उनके पास है उसको जो बच्चा सबसे जास्ती तवज्जो देगा संभालने का उसी को सौंप दो, और सबसे जास्ती तवज्जो देने वाला बाप का बड़ा बच्चा ही होता है समझदार। क्यों छोटे बच्चे क्यों नहीं है? क्योंकि उन बच्चों में लंबे समय की प्योरिटी की पावर आती है बाप की। क्या 5,000 साल के बाद वो परम पुरुष परम पिता इस शक्ति पर आता है, बड़े बच्चे में मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है ना, है पता है, तो उसकी सारी पावर किसमें गई? बड़े बच्चे में गई। उस पावर के आधार पर वो आत्मा पुरुषार्थ करती है, और पुरुषार्थ करके परम पद जिसे विष्णु पद कहा जाता है, जिसे परम आत्मा कहा गया है गीता में, परमात्मा इति उदाहरण, परमात्मा जिसे कहा जाता है वो बनती है परमात्मा पार्थधारी। इस तरह तीन तरह की आत्माएं हो गई सच्ची में, एक सर्वोपरि कही जाती है मानी जाती है परम पुरुष है, कौन जिसका सदा नाम क्या है? शिव, अक्षर वो कभी क्षरित होती नहीं। बाकी सभी मनुष्य आत्माएं 500-700 करोड़ कैसी है, क्षरित पतित होने वाली। क्षरित हो गया, गिर गया, पतित हो गया, शक्ति क्षीण हो गई, तो शिव बाप आकर के तरीका बताते हैं। क्या उस तरीका का नाम क्या है? राग योग। जिस योग में राग भरा हुआ है, गुह्य राग बताता है, गुह्यात गुह्य कर्म ज्ञानम, गुह्य से गुह्य ज्ञान बताता है। क्या गुह्य ज्ञान बताता हूं? पहली बात, स्वधर्म ही निधनम से है, पर धर्म हो भया। स्व माने अपरम, धर्म माने धारण, अपनापन है। अपना क्या है? आत्मा। आत्मा के धर्म में मर जाए, आत्मा की स्मृति में वो भी श्रेष्ठ है। पर धर्म हो बराबर, दूसरे का धर्म स्वीकार कर लिया, वो जन्म जन्मांतर भयभीत करता रहेगा, दुखी करता रहेगा, पराधीन सपने सुख नाही, कर विचार देखो मन माही। जो पराधीन होता है उसको स्वप्न में भी सुख नहीं होता है, तो क्या करना है? स्वाधीन, आत्मा के अधीन बनना है। अब आत्मा को जानते ही नहीं, 500-700 करोड़ मनुष्यों की क्या हालत हो जाती है सन 36 से पहले है? क्या हालत हो जाती है? अपनी आत्मा को बेसिकली भी नहीं जानते कि मैं आत्मा ज्योतिर्लिंग। वो आत्माओं का बाप आकर के जन्म देता है, स्मृति देता है, स्मृति रूपी जन्म देता है कि तुम देह नहीं हो, पांच तत्वों का पुतला नहीं हो, तुम आत्मा हो। भारतवासी कहते तो हैं हम आत्मा हैं, आत्मा हैं, आत्मा हैं, लेकिन जानते हैं कि आत्मा क्या है? कह देंगे आत्मा सो परमात्मा, बात खत्म। महात्मा हर आत्मा परमात्मा, हर आत्मा परमात्मा, ये कैसे हो गए? शिव हम आत्मा ही शिव हैं, कोई दूसरा भगवान नहीं। ब्रह्मास्मि, हम ही ब्रह्म हैं, ब्रह्मा है, दूसरा कोई ब्रह्म नहीं। इन बातों का फाउंडेशन डालने वाले, शूटिंग करने वाले, रिहर्सल करने वाले हम ब्राह्मणों की दुनिया में हैं या बाहर हैं? कौन है? देदारी बंगुरु है, कोई एक का नाम ले लो है, ब्रह्मा। अगर ब्रह्मा देहधारी धर्मगुरु है तो ब्रह्मा से पैदा होने वाले जितने भी होंगे वो सब क्या हुए है? देहधारी धर्मगुरु हुए। तो हम सब क्या हैं? है? है? हम सब क्या हैं? देहधारी धर्मगुरु हैं या नहीं? है?
नहीं
है, है या नहीं? अरे चौबीस घंटे आत्मिक रूप में स्थिर रहते हैं, यह देह ज्यादा याद आती है अपनी और पराई? तो हम देहधारी है या नहीं?
इस बात चल रही थी अपने को जो भगवान समझते हैं वो, हम अपने को भगवान थोड़ी समझते हैं, वो तो ठीक है भगवान।
देहधारी ही अपने को भगवान समझते हैं, हैं? जो अपन को भगवान समझते हैं वो देहधारी हैं या नहीं है? हैं? देहधारी है, पहले पहले वो देहधारी जो अपन को भगवान समझते हैं। उन देहधारियों में अव्वल नंबर कौन?
ब्रह्मा।
उसके बाद इब्राहिम, फिर बुद्ध, फिर कैसे, फिर वगैरह वगैरह वगैरह। उनके बाद उनके फॉलोअर्स आए ना नंबर वन है, तो हम भी नंबर वार की लिस्ट में हैं। ये अव्वल नंबर है।
भगवान हम नहीं समझते है ना,
है
ब्रह्मा जो अपने को भगवान समझता था,
ब्रह्मा अपन को भगवान समझता था,
भगवान का
हम अपन को क्या समझते हैं? क्या समझते हैं?
जो देहधारी है समझते हैं हम भगवान हैं, तो वो हो गया ऐसा थोड़ी है कि सब देहधारी
है। अच्छा सब देहधारी भगवान नहीं है तो है क्या आपको तो बताओ।
आत्मा जो समझते
है आत्मी की स्थिति में
थोड़ी आत्मा नहीं समझते तो देहधारी भगवान हो गए।
आत्म की स्थिति में है प्रैक्टिकल में
नहीं है,
तो आज नहीं तो कल,
वो अगर बात है कल होगा कल देखेंगे।
कल कहो माया परीक्षा लेगी या नहीं लेगी? माया देवान की परीक्षा जरूर लेगी। पांच विकारों का बाप जो देवान है उसकी परीक्षा एक एक के अंदर से लेगी कि कितना कितना देवान है। देह अभिमान का बाप का बच्चा है या आत्मा अभिमानी जो बाप है उसका बच्चा बना है?
ड्रामा में होगा तो क्यों?
ड्रामा में होगा तो देखा जाएगा। भविष्य के लिए ड्रामा बोला,
ड्रामा को छोड़ दो,
पुरुषार्थ करो, लेकिन ड्रामा को तो मत छोड़ो ना।
नहीं नहीं वही तो जैसे आप कह रहे हैं कि कल अगर होगा कल बन जाएंगे, तो हम भी तो वही कह रहे कल बनेंगे, कल
जाएंगे। कहा कह रहे कल बन जाएंगे?
हम यही कह रहे हैं कि हो सकता है कल धर्म में बन जाए, हम
कल बन जाए। अरे अभी स्थिति क्या है?
अभी जिनकी स्थिति है वो जाने, हमारी हम नहीं कर
सकते। हमारी अपनी स्थिति आत्मिक स्थिति है।
ये बात थोड़ी आत्मिक स्थिति नहीं है तो हम धर्मगुरु हो गए।
प्रैक्टिकल में क्या है? देह की स्थिति है ना, स्वीकार कर लेनी चाहिए ना।
हम भी स्वीकार कर रहे हैं की स्थिति,
हमारी देह की स्थिति है, देहभान में है, तो हम विकारी हुए या निर्विकारी हुए? विकारी हुए। और देहधारी धर्मगुरु भी विकारी होते हैं, निर्विकारी तो होते नहीं। तो जो विकारी होते हैं वो ही देहधारी धर्मगुरु इतने विकारी बन जाते हैं कि वो भगवान नहीं पहचान में आता है, कुछ न कुछ अनिश्चय पैदा होता रहता है, और वो अनिश्चय बुद्धि क्या कहा जाता है? विनश्यते। क्या विनश्यते? आत्म की स्थिति का विनाश हो जाता है। कब? आत्म की स्थिति का विनाश ही तब हो जाता है जब हम आत्मा अपने को लगातार समझ ही नहीं पाते, स्मृति में ही नहीं आती। जरूर हमने दूसरों की बातों को ज्यादा ध्यान दिया है। जो ऊंचते ऊंच आत्मा है उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। जो आया हाँ सत्य बचा महाराज, ठीक है कृपाल, सत्य है ऐसा हम भी सोचते, लेकिन ये बात हमारे दिमाग में नहीं आई पहले। फेसबुक में जब हम गए तब हमारी बुद्धि में आया, कि यही बात सच्ची है। अरे जब ज्ञान के आदि काल में थे तब सच्चाई क्या थी है? जब ज्ञान के आदि काल में थे तब सच्चाई ये थी कि निश्चय पत्र लिख करके दे दिया, दिया या नहीं दिया? और अब क्या सच्चाई है? अब दूसरों की बातें अच्छी लगती हैं, सच्ची लगती हैं, कुछ न कुछ परसेंटेज में भी लगती हैं या नहीं लगती है? दिल की बातें लगती हैं या नहीं लगती?
नहीं लगती,
नहीं लगती है। ऐसा होता है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है या नहीं है? है? समाज का आधार लिए बगैर जन्म जन्मांतर जिंदा रह सकता है या नहीं रह सकता है? है? नहीं रह सकता है। समाज के बंधन में बंध करके रहना पड़ता है। क्या एक ही राजा होता है जो अपने राज्य में किसी के बंधन में नहीं रहता? वो छोटे मोटे राजाएं होते हैं नंबर वन। एक राजा ऐसा भी है। कैसा है? एक राजा इस मनुष्य शक्ति में ऐसा है हाँ, जो किसी के अधीन नहीं रहता। सारी शक्ति उसके अधीन होगी लेकिन वो किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करेगा, वो किसी के वाद को स्वीकार नहीं करेगा। उसे वाद अच्छा लगेगा तो उसका चलाया हुआ वाद ही अच्छा लगेगा, किसी दूसरी आत्मा के वाद में उसे मजा ही नहीं आएगा। तो साबित हुआ कि इस दुनिया में किसी की बात अच्छी न लगे, दुनिया में संबंध में संपर्क में तो आने वाले बहुत होते हैं लेकिन कोई संबंधी में बिल्कुल बंध करके लगातार रहे ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा सर्व संबंधी कोई देहधारी या सदा विदेही? जो हमारा संबंधी, और जो हमारा संबंधी बड़े से बड़ा संबंध क्या होता है? बड़े से बड़ी प्राप्ति कराने वाला संबंध क्या होता है? बड़े से बड़ी प्राप्ति कराने वाला, वर्षा दिलाने वाला बाप का संबंध। लेकिन जो बाप का वर्षा है उसकी अगर कदर की तो ठीक, और थोड़ी भी बेकदरी कर दी तो जज क्या आएगा है? ठीक देंगे ना? तो जो बच्चा बाप की प्रॉपर्टी की कदर करता है, माना जो बाप का धंधा तो बच्चे का धंधा, बाप का धंधा नहीं तो बच्चे। अब बाप का धंधा क्या है इस सृष्टि में आकर के? ज्ञान देना। बच्चों को क्या धंधा होना चाहिए? वही ज्ञान, ज्ञान माने पहचान, जानकारी। बच्चों का भी धंधा यही होना चाहिए, ज्ञान, जानकारी, सच्चाई की जानकारी। इस सृष्टि में सदाकाल सत्य क्या है, कौन हो सदाकाल सत्य? 84 जन्मों में तो हम नहीं पहचान सके क्योंकि जन्म मरण के चक्र में थे। अभी हम जन्म मरण के चक्र से न्यारे हो सकते हैं, निश्चय अनिश्चय रूपी जन्म मरण के बेहद के चक्र से पहले न्यारे होंगे कि हद के चक्र से पहले न्यारे होंगे? बेहद के चक्र से पहले न्यारे हो जाए। बेहद का चक्र क्या है? निश्चय अनिश्चय। निश्चय बैठा माने बाप के बच्चे बने जिंदा हुए, अनिश्चय बैठा माने बाप के बच्चा मर गया। तो सदाकाल निश्चय में रहे, 1% भी अनिश्चय न पैदा होने पाए। किसी की बात सुनने वाले नहीं है। बाप का जो वाद है उस वाद के बरखिलाफ हम कोई प्रतिवाद सुनना नहीं चाहते। सुनेंगे तो एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से हियर नो इविल। अरे हियर नो इविल तो क्या, उसका जवाब भी हम नहीं देंगे। टॉक नो इविल, व्यर्थ की बात, कोई अर्थ नहीं, कोई आगे पीछे नहीं। हम एक बाप के बच्चे बने या दो दो चार चार आठ आठ बापों के बच्चे बने? कुतिया ने पैदा किया क्या है? हमको किसने पैदा किया? हम एक बाप के बच्चे हैं ना। कोई कोई चार चार बाप बना लेते हैं, आठ आठ बाप बना लेते हैं। जैसे आर्य समाज में उनके अंदर कोई धर्म के ऊपर आस्था नहीं रहती। कांग्रेस गवर्नमेंट धर्म निरपेक्ष राज्य, हमें कोई धर्म की अपेक्षा नहीं है। ये संस्कार उनमें कहां से आया? अरे कहीं से आया होगा ना, है? संगम से भी आया और संगम में ही खास आया। यहां जब देखा ये संगठन का खूब उत्थान हो रहा है, ये विश्व पार्टी बड़ा बुलंद हो रही, तो इधर धक्का मारा उधर पहुंच गए। फिर देखा दूसरी पार्टी बड़ी बुलंद हो रही है, कभी बंबई की पार्टी विश्व पार्टी, कभी अहमदाबाद की विश्व पार्टी, कभी यूपी की इटावा जिले की विश्व पार्टी, कभी मथुरा की विश्व पार्टी, मथुरा में एक बैठा हुआ है, किसी जज की कन्या से कोर्ट मैरिज कर ली और रोज ढोल मजीरा बज रहा है और बड़े सत्संग लग रहे हैं, बड़ा नाच गाना होता है और ब्रह्मा कुमारियां उन्हें शादी कर लेती, बसों की बसें भरकर ले जाते हैं, कुछ न कुछ चढ़ावा चढ़ाते हैं और कुछ दिन रह करके अतिथि सत्कार लेकर के चले आते हैं। तो जहां देखी तबा बड़ा वही बिताई सारी रात। एक ऐसा भी धर्म है कि द्वापर के आदमी इस्लाम धर्म आता है, उनका जोर शोर देखते हैं तो उस धर्म में कन्वर्ट हो जाते। फिर 250 वर्ष के बाद बौद्ध धर्म आया, जोर शोर देखा वहां कन्वर्ट हो। फिर क्रिश्चियन धर्म आया 250 वर्ष के बाद वहां कन्वर्ट हो गए। माने जहां जहां उत्थान देखते हैं, जहां जहां खीर पूरी बरात देखते हैं वहां वहां कन्वर्ट हो जाते। आज के नेता क्या कर रहे हैं? है? आज इस पार्टी में, कल दूसरी पार्टी में, परसों तीसरी पार्टी में, चौथी अगली पार्टी में ये है कांग्रेसी नेताओं की गतिविधि। उन्हें किसी धर्म पर आश्रित में आस्था नहीं रहती, सब धर्मों पर आस्था उखड़ती जाती है, नए नए धर्मों पर आस्था बैठती जाती है, और जिन नए धर्मों पर आस्था बैठती है जल्दी ही उनसे भी उखड़ जाती है। तो अंतिम जन्म में ये कांग्रेसी सरकार चलती है आर्य समाज में, जो किसी धर्म की अपेक्षा नहीं करते। और बाबा ब्रह्म वाक्य में क्या बोलते हैं मुरली में है? राज्य और धर्म के बारे में क्या बोलते हैं? और वो राज्य ही क्या जो किसी धर्म पर आधारित न हो। धर्म सत्ता राज्य सत्ता एक के हाथ में होनी चाहिए, दोनों का सामंजस्य होना चाहिए, लेकिन नहीं देखी जाती। तो वो है आर्य समाज, और वो आर्य समाज ही बेसिक में भी बड़े दुश्मन बने थे, अभी भी बड़े दुश्मन हैं, और एडवांस में भी जो बीज रूप आत्माएं इस प्रकार की हैं, अनेकों को बाप बनाने वाली, अनेकों की बातों को सुनने वाली, कान लगा करके हाँ सही सबकी प्रजा बन जाती है। प्रजा माने प्रभावित, प्रभावित माने प्रजा, वो प्रजा के ऊपर ही बड़ा विश्वास करते हैं। क्या राजाई पर विश्वास नहीं है, राजाएं खत्म। कांग्रेस गवर्नमेंट आई तो राजाओं को खत्म कर दिया या चालू रहे? खत्म कर दिया। राजाई नहीं चाहिए, राजाएं नहीं चाहिए, क्योंकि राजाएं भगवान बनाता है। क्या हम प्रजातंत्र राज्य बनाएंगे? बाप कहते हैं आत्माओं का बाप, क्या कहते हैं प्रजा के ऊपर, प्रजा का राज्य है बेकायदे राज्य, इसमें कोई कायदा कानून चल ही नहीं सकता, अत्याचार बढ़ते जाएंगे, दुराचार बढ़ते जाएंगे, कोई धनी धोरी नहीं, 20 बार 100 नंबर खटखटाते रहो, कोई सुनवाई नहीं होगी, चक्कर काटते रहो लोअर कोर्ट के, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला। जब ऐसी स्थिति हो जाती है समाज की, कोई धनी धोरी देखने में नहीं आता, तब भगवान बाप आते हैं और ये आध्यात्मवाद का ज्ञान लेकर के आते। जब आते हैं और जो जो उस समय पहचानते हैं, पहली पहली बार बेसिक में या एडवांस में, तब बड़े खुश होते हैं। क्या जो पाना था वो पा लिया। फिर जब तमो प्रधान होते हैं, श्रीमद के दर खिलाफ कुछ न कुछ गलत कार्य करते हैं, तो अवस्था नीचे गिरेगी ऊपर और ऊपर उठेगी है, अवस्था नीचे गिरती है। बस ये ज्ञान झूठा, भगवान झूठा। इधर की सुनो, उधर की सुनो, उनकी सुनो, वो क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं, बस या तो टाइम वेस्ट होगा या तो कोई के चक्कर में आ जाएंगे। तो करना क्या चाहिए?
एक
भक्ति मार्ग में भी कहते हैं, पानी पीजे छान के और गुरु करिए जान के, करते भी हैं, ऐसे भी नहीं कि नहीं करते हैं। ठीक, तो क्या करते हैं? नहीं, बाबा कहते हैं गॉड का ताला लगाए देता हूँ। किसका ताला? गॉड रेज, गॉड माने भगवान, रेज माने किरण। क्या? भगवान की जो किरणें हैं, भगवान का जो ज्ञान है, वो कितने धर्म पिताओं के रूप में, कितने धर्म पिताओं के द्वारा संसार में प्रसारित होता है, है? अरे जो भी धर्म पिताए हैं, उन धर्म पिताओं के द्वारा भगवान का ही तो ज्ञान प्रसारित हो रहा था सात्विक स्टेज में, जब धर्म पिताए आए थे। नहीं, जब तक वो मौजूद रहते हैं साकार में, तब तक अपने अपने धर्म का उत्थान होता है, और जब वो चले जाते हैं तो उनके फालो मटिया मैच करते जाते हैं। ऐसे ही यहाँ भी है, यज्ञ के आज में जो माता थी, कौन? परम ब्रह्म। दुनिया में भी देखा जाता है, कोई भी परिवार में, परिवार के जो भी भांति होते हैं, बहन हो, भाई हो, बहू हो, भतीजा हो, परिवार होता है ना, माता कब बनी, कैसे बनी, किसने बनाया, किस तरीके से बनाया, परिवार के भातियों को असल बात का पता होता है, होता है नहीं होता? ऐसे यज्ञ के आदि में हुआ, परम ब्रह्म में परम पिता ने प्रवेश किया, और जब प्रवेश किया था उसी समय से स्थापना के साथ यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला भी प्रकट हुई थी। और द्वितीय विश्व के युद्ध के आसपास वो ब्राह्मणों का संगठन पूरा विघटित हो गया, यानी विघटित हो गया, हद में बेहद में हीरोशिमा, हीरो की क्षमा टोटल जल गई, या नहीं जल गई, नेतनाबूद हुई ना। इस देश का नाम क्या है? है? नहीं, वो तो शहर का नाम है, जापान। क्या? सारा पानी चला गया। जब तामसी बनते हैं तो लड़ते हैं, बीज पड़ता है संकल्पों का बीज। क्या? कोई बात पहले संकल्प में आती है, फिर वाचा में आती है, बाद में दृष्टि में भी आती है,
वाचा में भी आती है, सब इंद्रियों में भी आती है, फिर विनाश हो जाएगा। तो यहाँ हमें क्या करना है?
संकल्प
मेरे धर्म से आदि किसी स्थिति में हम मर मिटे भले, लेकिन हम किसी दूसरे की बात स्वीकार नहीं करेंगे। हमने एक बार निमित्त रूप में एक को पहचान लिया, निश्चय का कभी बदली नहीं है। यदि ये आदमी
खून से लिख करके देते रहे तो अटल अखंड रहना चाहिए या टल जाना चाहिए? अंगद बन के रहना चाहिए। नाम क्या दिया? अंग। अंग दे दिया। क्या किया उसने? अंग। अंग दे दिया। किसको दे दिया? है एक आत्मा को दे दिया या जो आया उसी को दे दिया? एक आत्मा को दे दिया। किस रूप में? वाचा से दे दिया, दृष्टि से दे दिया, सभी कर्मेंद्रियों से दे दिया, या कैसे दे दिया? मन बुद्धि से दे दिया, इंद्रियों से नहीं दिया है? इंद्रियों से हम दूसरों को भी बांटते रहे,
इंद्रियों से मन
तो दिया। देखें अपने जीवन में क्या तन से, मन से, धन से, तन की इंद्रियों से एक को ही दिया? अरे बोलो,
नहीं बोलो,
नहीं दिया। जब एक को दिया ही नहीं, बिखराई दिया तो दिल से बिखराया या मजबूरी से बिखराई दिया? दिल से दे दिया तो दिल के कितने टुकड़े हो गए? हजार टुकड़े हो गए तो कुछ बचेगा? कुछ नहीं बचता। अब कहते हैं कि हम देहधारी धर्म गुरु नहीं
है, तो अभी भी कहेंगे नहीं
दे दिया। अंग अंग दूसरों दूसरों को दे दिया। क्या
अब नंबर बार समय
मैंने नंबर बार देहधारी धर्म गुरु हो गए ना?
धर्म गुरु तो तब हुए जब अपने को भगवान समझे।
अरे जो भगवान होता है प्रैक्टिकल में होता है ना, उसका परिवार कितनों का होता है? बहुतों। माने कितने है? राजयोगियों का परिवार भगवान, जो भगवान बनता है प्रैक्टिकल में, क्योंकि एक तो है निराकारी आत्माओं का निराकार भगवान, निराकार बाप, वो तो निराकारी ज्ञान का वर्षा देता है। दूसरा है मनुष्य शक्ति का बाप, शरीर के साथ, बिना शरीर के साथ, शरीर के साथ बाप है तो बिना बरसे का बाप है, है? मुरली में तो बोला है बाप माने ही वर्षा, वर्षा न दे तो बाप किस बाप का? तो मनुष्य शक्ति का बाप है तो क्या देता है? निराकार आत्माओं का निराकार बाप तो निराकारी ज्ञान का वर्षा देता है। ये बाप क्या वर्षा देता है?
मुक्ति और जीवन मुक्ति
राजाई का
मुक्ति का वर्षा भी बाद में देगा, पहले स्वयं कुछ वर्षा कमा के अपने पास रखेगा या नहीं रखेगा?
रखेगा।
खुद कमाई करके रखेगा तो बाप है या बाप दादे की कमाई है वो भी उड़ाई दी फिर बाप है? अपना भी कमाए बाप दादे का भी सुरक्षित करके रखे, वो है असली बात। तो ये क्या देता है?
पहले ज्ञान
वो ज्ञान लेता है कि देता है? वो लेने वाला है असल में या देने वाला है?
देने वाला।
उसको देने वाला नहीं कहा जाता, जो ले करके देता है। क्या भारत की गवर्नमेंट विदेशों से लोन लेती रहती है और फिर दूसरे देशों को देती भी रहती है, तो लेता है या देता है? असली क्या है? लेता। तो लेता नहीं, ये मनुष्य शक्ति का बाप वास्तव में क्या देता है? अच्छा, कमाई क्या करता है? वो क्या ज्ञान की कमाई करेगा? ज्ञान की सारी कमाई तो शिव बाप देता है ना। बाप कहते हैं तुम मुझे जितना याद करोगे मैं तुम्हारे साथ हूँ, ऐसे है कि नहीं? जब हम उस बाप को याद करते हैं तो वो हमारे साथ हो जाता है, माने हम निराकारी स्टेज में उतना ही टिकेंगे जितना हम उसे याद करेंगे, जितना हम उसकी दुकान की सेवा करेंगे तो बाप हमें याद करेगा। हम उस निराकार को याद करेंगे तो निराकारी स्टेज में टिकेंगे ना, निराकारी सूक्ष्म स्टेज में टिकेंगे तो मनन चिंतन मंथन ज्यादा चलेगा या कम चलेगा? ज्ञान की गहराई में ज्यादा जाएंगे या उथले उथले रहेंगे? ज्यादा जाएंगे। और जितना ज्ञान की गहराई में ज्यादा जाएंगे उतना हमारी आत्मा के अनेक जन्मों की प्रत्यक्षता आत्मा के अंदर होती जाएगी। तो मूल साधन क्या हुआ?
याद।
याद माने योग। योग कहेंगे शक्ति। क्या योग ही क्या है? शक्ति। योग की शक्ति योगी के पास होगी या भोगी के पास होगी? योगी के पास योग की शक्ति होगी। क्या ज्ञानी के पास ज्ञान की शक्ति होगी? जितना जास्ती ज्ञान की शक्ति होगी, जानकारी की शक्ति होगी, उतना बाप को पहचानेगा और जितना पहचानेगा उतना याद करेगा। तो याद की शक्ति बढ़ी ना? नहीं बढ़ी। तो सबसे जास्ती याद की शक्ति किसमें बढ़ती है? मनुष्य शक्ति के बाप में याद की शक्ति का अकूत भंडार है, जो धर्म पिताओं में नहीं रहता। धर्म पिताएं औरों के संग के रंग में आते जाएंगे, नीचे गिरते जाएंगे। नहीं समझ में आया क्या? नहीं समझा है?
कह रहे
तो
नहीं आया।
हम कह रहे हैं तो मान लेंगे, क्योंकि आप तो हमसे लड़ाई लड़ पड़ेंगे, सबके सामने हमको नीचा दिखाई देंगे, बाचा में आपसे हम जीत नहीं पाएंगे, इसलिए आप कह रहे हैं तो मान लेंगे, लेकिन हमें दिल से नहीं मान रहे। शिव बाप से हमें अकूत ज्ञान का भंडार मिलता है, क्योंकि वो शिव बाप निराकारी आत्माओं का, निराकारी बाप, निराकारी वर्षा ज्ञान का भंडार देने वाला है। तो मनुष्य शक्ति का बाप हमें क्या देता है वर्षे में? योग की शक्ति देता है। क्या देता है? योग की शक्ति देता है। ये योग शक्ति का भंडार उसमें ऐसा है, जबरदस्त है, कि उसको संघ का रंग किसी का नहीं लग सकता। धर्म पिताओं को लगता है, दादा लेखराज ब्रह्मा को संघ का रंग लगता है, और हार्ट फेल होता है, लेकिन योगी का हार्ट फेल नहीं हो सकता। कितने भी संघ के रंग में आए, उस योगी का संपन्न रूप क्या है, संपूर्ण स्टेज क्या है, जो परम पद गाया जाता है, है? क्या है? विष्णु पद। विष्णु पद में क्या दिखाते हैं? क्षीर सागर में नारायण लेटा हुआ है। नार माने ज्ञान, जलायन माने घर, ज्ञान के घर में लेटा हुआ है। अज्ञान का नाम निशान नहीं है, ज्ञान के घर में लेटा हुआ है, अज्ञान का नाम निशान नहीं है। तो इतना ज्ञान का भंडार बुद्धि में समाया हुआ है, जो बाप को पक्का पक्का पहचान लिया, अनिश्चय बुद्धि होने का सवाल है, पैदा ही नहीं हो सकता। जब अनिश्चय बुद्धि का सवाल पैदा ही नहीं हो सकता, तो जो भी संपर्क संसर्ग में आएंगे, इंद्रियों के संबंध में आएंगे, उनके संग का रंग बाप की याद में लगेगा, है? लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। यादगार दिखाई है विष्णु की, ढेर की ढेर सर्प सर्पणियों की शैया। क्या सर्प एक प्रकार का होता है, है? अनेक प्रकार के सर्प सर्पणियों की शैया, और उन सर्प सर्पणियों के बीच में अंग संग होते हुए, अंग संग रहता है कि नहीं? कोई संग का रंग नहीं लगता, बड़े आराम से रहता है या बेआरामी होती है। जैसे शिव बाप पतित तन में आता है, पतित दुनिया में आता है, पतित तम कामी कांटे में आते हुए भी वो आत्मा बेआरामी महसूस करती है कि सदा एक रस रहती है,
सदा एक रस रहती है।
उसका है ज्ञान का वर्षा, और उस ज्ञान को प्रैक्टिकल जीवन में जो लाता है, ज्ञानी होने के साथ साथ योगी बनता है। क्या बनता है?
योगी बनता है।
शिव बाप को योगी कहेंगे?
नहीं।
क्यों नहीं कहेंगे?
उनको योग लगाने की क्या जरूरत
है? और अगर योग लगाने की दरकार है तो किससे योग लगाता है? हाँ? उससे बड़ा कोई है?
नहीं।
कोई है ही नहीं उससे बड़ा ज्ञानी। तो ऐसे ही योगियों में जो बड़े से बड़ा अकूट योगी है, हर युग में नहीं, कौन से युग में? संगम युग में अकूट योगी है, जिस योग की शक्ति से सारी दुनिया के वाइब्रेशन को कैच कर सकता है। क्या?
सारी दुनिया के
वाइब्रेशन को कैच कर सकता है। जैसे शास्त्रों में गायन है कि ऋषियों मुनियों के आश्रम में शेर और बकरी का ऐसा वाइब्रेशन शुद्ध बन जाता था कि वो एक घाट पानी पीते। ऋषियों मुनियों का, ब्रह्म ऋषियों का ऐसा वातावरण देखा गया। तो वो तो ऋषि मुनि है, सप्तऋषि कहे जाते हैं, वो सप्तऋषि सात नारायण ही हैं। क्या? कम कलाओं वाले वो सप्तऋषि वास्तव में कोई संपूर्ण देवता नहीं है। कृष्णवली आत्मा संपूर्ण देवता है, लेकिन भगवान भगवान नहीं, महादेव नहीं है। उसको जन्म देने वाला वो वाइब्रेशन को कंट्रोल करने वाली योग वाली ये आत्मा है। अभी देखो 80 साल हो गए, भाग दौड़ की कितनी ब्राह्मणों ने सेवा की, भाग दौड़ करके सारी दुनिया में संदेश देने की सेवा की या नहीं की? सारी दुनिया को संदेश मिला? वाचा से सत्य ज्ञान की एडवांस पार्टी वालों ने सत्य टीचर के द्वारा सच्चाई को जान करके सत्य बात को समझ करके नंबर वार सेवा की या नहीं की? बात ऐसी दुनिया को संदेश मिला
नहीं
मिला? एडवांस पार्टी ने भी जो ब्रह्मा कुमार कुमारी अपन को कहते हैं कि हम प्रजापिता की औलाद हैं, प्रजापिता ब्रह्मा की, वो प्रजापिता ब्रह्मा अपनी स्टेज के आधार पर वाचा तक पहुंचा है सर्वोपरि स्टेज में, जिसको वाचा में हार खिलाने की शक्ति पर किसी को हिम्मत नहीं है। जैसे ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में ब्रह्मा कुमार कुमारियों के सामने, ब्रह्मा बाबा के सामने एक से एक दुनिया के बड़े बड़े धुरंधर आए, ज्ञानी आए, अलग अलग धर्मों के आए, लेकिन कोई ने उनको क्रॉस नहीं कर पाया। जो एक बार ब्रह्मा कुमार बन गया वो दोबारा दूसरे धर्म में वापस नहीं है। ऐसे ही जो एक बार ब्रह्मा कुमार से एडवांस में आ गया, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार बन गया, वो दोबारा ब्रह्मा कुमारियों के पास नहीं जाता, दिल से नहीं जा सकता। इसे साबित क्या हुआ?
प्रजापिता को कोई भी क्रॉस नहीं करता।
वाचा में प्रजापिता तो बात छोड़ो, प्रजापिता की जो रचना है, जगत पिता की जो रचना है, जगत माता जगदम्बा, उसका ही ज्ञान में कोई क्रॉस करने वाला नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? तो बाप की तो बात ही छोड़ दो, फिर क्या सारी दुनिया को संदेश मिला?
नहीं मिला
है? क्या साधन रह गया सच्चाई को फैलाने
का?
टेप रिकॉर्डर में गया, वीसीडी में गया, डीवीडी में गया, पेन ड्राइव में गया, चिप में गया, इंटरनेट में गया, वेबसाइट में गया, यूट्यूब में सारी दुनिया सुनाई जा रही, इसमें भी पहुंच गया, लेकिन क्या दुनिया में लहर फैली है? नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? अकूत योग का भंडार कोई बना है इस सृष्टि पर अभी या नहीं बना है? नहीं बना है। सुप्रीम सोल बाप, आत्माओं का बाप क्या इंतजार कर रहा है? अपना वर्षा देने के लिए, विश्व की बादशाही का वर्षा देने के लिए क्या इंतजार कर रहा है? अकूत ज्ञान का भंडार देने के लिए क्या इंतजार कर रहा है? अभी ज्ञान तो दिया है, कहते भी है मुझे जो कुछ देना था सो दे दिया, मेरे पास अब कुछ बचा नहीं। जैसे बीज गणित है, बीज गणित में कुछ प्रक्रियाएं होती हैं जो बताई जाती हैं, ऐसा करो, ये धन, ये ऋण, वो ऋण, ऐसे वो से, तो नई चीज निकल आती है कि नहीं? ऐसे ही ज्ञान जो दिया गीता ज्ञान, उस गीता ज्ञान को ज्ञान अमृत ऐसा बनाया किसी ने जो अमर हो जाए, क्या कैसा अमर?
मृत्यु
ना हद की मृत्यु हो और ना बेहद की मृत्यु, जो सिख लोगों में खास गाया जाता है, कालों का काल महाकाल, जिसको कोई काल खा नहीं सकता। काल पांच तत्वों की देह को खाता है या आत्मा को खाता है?
देह
को खाता है। तो अकाल मूर्त का मतलब क्या हुआ? ऐसी मूर्ति, अकाल मूर्त माने ऐसी मूर्ति जिसको काल खा नहीं सकता, वो मूर्ति शिव के मंदिर में दिखाई गई है अमूर्त। इसलिए गीता में कहा अव्यक्त मूर्त ना। अव्यक्त क्यों कहा? आंखों से देखने में तो आता है शिवलिंग आता है, लेकिन जो बड़ा रूप लिंग है देह की यादगार, उसमें इंद्रियां देखने में नहीं आती। इंद्रियां है, हाथ पांव नाक आंख कान है, क्यों नहीं दिखाए? क्योंकि वो आत्मा जिसकी यादगार है शिवलिंग, वो आत्मा ऐसी स्टेज में टिक जाती है। हीरो पाटदारी, जिस हीरे की यादगार सोमनाथ मंदिर में पत्थर में दिखाई गई, वो हीरा मनुष्य शक्ति के बाप की यादगार, शिव की यादगार नहीं। शिव बाप तो कहते हैं ब्रह्मा मुख से, क्या कहते हैं? मैं पूज्य नहीं बनता, मैं पुजारी भी नहीं बनता, न मैं पूज्य बनता हूँ न मैं पुजारी बनता हूँ, तुम बच्चे ही पूज्य बनते हो, तुम बच्चे ही पुजारी बनते। तो जो सोमनाथ मंदिर में विक्रमादित्य ने लिंग को पूजा, उसमें हीरे को पूजा, वो कौन है? वो हीरा कौन है? वो लिंग कौन है? है? एक ही हीरो पाटधारी है जो बौद्धिक स्तर से प्रैक्टिस करके ऐसी स्टेज में टिक जाता है कि स्त्री अंग के कामांग के साथ लगातार रहते हुए भी उसको संग का रंग बुद्धि से नहीं लगता, वो इंद्रियों के सुख से परे चला जाता है, अतिंद्रिय सुख की स्टेज में चला जाता है, इंद्रियों का रस लेता रहता है। अतिंद्रिय सुख की स्टेज में पहले वो जाए, उसके बाद 16,000 गोप गोपियों का गायन होता है। क्या कौन सा गायन? अतिंद्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो, जिनकी संख्या 16,108। ओम शांति।